ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಗೇನ್. ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಲನ जो विशेष रूप से राजनेताओं के लिए आयोजित किया गया है, उसके उद्घाटन सत्र में भाग ले रहे हैं। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व मैं आज के माननीय वक्ताओं का मंच पर स्वागत करती हूं। आदरणीय मिस्टर इंद्र बहादुर बनिया जो नेपाल से आए हैं, और हम सब करतल ध्वनि से उन सब का अभिनंदन करेंगे। बहनों से निवेदन करूंगी आपको मंच पर। Member of Parliament from Nepal, Mr. Amar Prasad Satpati, ex-minister aur vartaman samay MLA hain aap Orissa se, aapka bhi hum manch par abhinandan karte hain. Dr. Topchom Minya, मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम मणिपुर, इतना दूर से हम सबके सम्मुख अपने विचार रखने हेतु पहुंचे, आपका हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हाँ, अच्छी तरह ताली बजा के करिए। हाँ, अच्छी तरह से ये उत्साह बढ़ाता है। मिस्टर सोमनाथ भारती, आप मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी हम मंच पर अभिनंदन कर रहे हैं। मिस्टर मोहन पटेल, एक्स एमएलए फ्रॉम गुजरात और बहुत पुराने बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप सहयोगी हैं, आपका भी मंच पर अभिनंदन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहन सुमन, जो कि ज्ञान सरोवर से हैं, सीनियर राजयोग टीचर, आपका हम मंच पर अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी शारदा, जो कि अहमदाबाद से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारी हैं, आपका भी हम हृदय से करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आज की सभा के चेयरपर्सन और इस पॉलिटिकल लीडर्स की सेवा हेतु जो विंग बना हुआ है, उसके चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार ब्रज मोहन भाई को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अपना स्थान आप ग्रहण करेंगे। आपके अथक प्रयास से आज हम सब यहाँ एकत्र हो पाए हैं। अच्छी तरह ताली बजाइए सारे मंच के लिए। हमारे मध्य भ्राता अनिल कुमार सैनी जी भी उपस्थित हो गए हैं, आपका भी हम मंच पर अभिनंदन करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मुजफ्फरपुर, अच्छी तरह ताली बजा करके करिए, देश के सुदूर पूर्व क्षेत्र से आप आ रहे हैं। अब मैं अपनी बहनों से निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पर आसीन इस समस्त मंच का अपनी शुभ भावनाओं से हृदय की दुआओं से पुष्पों से और बैज लगाकर आप सबका अभिनंदन करेंगी। और आप सब अपना उमंग उत्साह व्यक्त करते रहेंगे। सर्वप्रथम हमारे सम्मुख हैं भ्राता सोमनाथ भारती। अमर प्रसाद सतपति जी को लगाया गया, बहन शारदा जी, भ्राता तोकचोम जी, भ्राता ब्रज मोहन भाई, उधर से भ्राता मोहन पटेल, बताना चाहूंगी कि आज के सिनारियो में ये जो विषय रखा गया है राजनेताओं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान सरोवर का हार्मनी हॉल का ये बलिष्ठ मंच अपने प्रकार का एक ही मंच है जहां हम पार्टी अफिलिएशन से ऊपर उठकर स्वच्छंद हृदय से दिल खोलकर क्या करना है, क्या होना चाहिए, वो हम चर्चा कर पाते हैं। ऐसा मंच शायद कभी मिलता हो जहां ये सब चीजें हम भुला देते हैं और अपनी विशेष चीज को हम याद करते हैं कि राजनेता कैसा होना चाहिए। ठीक बात, ठीक, राजनेता कैसा होना चाहिए। पार्टी में हम कुछ भी बात करेंगे लेकिन जब यहां आध्यात्मिक मंच पर एकत्र होते हैं ये सब बातें हम भूल जाते हैं। और जो विजन, जो मिशन लेकर आप राजनीति में उतरे थे वो सब बातें आपको याद आना आरंभ हो जाती हैं। ठीक कह रही हूं, सब बातें आरंभ हो जाती हैं। हमें क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, ये सब बातें हम बहुत गहराई से यहां सोच पाते हैं। आप कह सकते हैं कि क्या हम इतने मुट्ठी भर अगर हमारा सशक्तिकरण हो भी जाए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? ईश्वरी विश्वविद्यालय का मानना है, हमारा मानना है, अवश्य होगा। परिवर्तन के लिए एक ही व्यक्ति काफी है जो पहला कदम उठाता है और उसके इंस्पिरेशन को लेके बाकी सब चल पड़ते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम ऐसा विश्वास रख रहे हैं कि अवश्य ऐसी कुछ बातें उभर करके आएंगे। आबू ऋषियों की भूमि है। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो कहा जाता है यहां की नखी लेक ऋषियों ने अपने नाखूनों से खोदी थी। जल समाप्त हो गया था, नाखूनों से खोदी थी। जो कुछ भी रहा हो ये तपस्या की निशानी है, तपोभूमि है। इसलिए परमात्मा भी यहीं पर आना पसंद करते हैं जहां चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण है। आबू पर्वत सर्वोत्तम तीर्थ स्थान भी है। ऐसे स्थान पर जो ऋषियों की भूमि रही हो, ऐसे स्थान पर जो परमात्मा की अवतरण भूमि है, ऐसी भूमि जहां दिन रात तपस्या चल रही है, वहां इस विषय की चर्चा करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट। आप पूछ सकते हैं, राजनेताएं तो वैसे ही बहुत पावरफुल हैं, उनको आध्यात्मिक सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता? प्यारे भाइयों और बहनों, सदा कहा गया रिलीजियो पॉलिटिकल, राज धर्म। अपने देश की संस्कृति को देखिए, दो ताजधारी देवताएं राज्य करते रहे, दो ताज, एक रत्न जड़ित और दूसरा प्रभा मंडल, जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा का प्रतीक है, पवित्रता पावनता का, उस शक्ति का प्रतीक है। वो सकारात्मक शक्ति जो आध्यात्म बल से उन्होंने प्राप्त की, उस राज्य में भी राजगुरु होते थे। शनै शनै बदलाव आया और हिज होलीनेस और हिज हाईनेस, ये दोनों टाइटल सेपरेट हो गए। जहां दोनों इकट्ठे थे, उस राज्य को हम स्वर्ग की संज्ञा देते हैं, जिसके लिए कहते राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। जहां सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म देवताओं का साम्राज्य था, जहां प्रकृति और पुरुष में हार्मनी थी, फ्लोरा और फौना में हार्मनी थी, आज रूप बदला हुआ है। और अगर पुनः जो हम सबके दिल की आशा है, हम वह संपूर्ण स्वतंत्र राज्य, स्वर्ग जिसको राम राज्य कहा, अगर हम वह चाहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, कोई दो राय नहीं है कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण अनिवार्य है, समय की डिमांड है। आज सिद्धांतहीन राजनीति, बुरा ना मानिएगा, सही बात स्वीकार करनी होती है, और जब स्वीकार करते तभी परिवर्तन होता है। सिद्धांतहीन राजनीति, स्वार्थ परता, चरित्र कहां है कुछ पता नहीं, भय, लोभ और अहम के पीछे की दौड़ आज का सिनारियो है। इसलिए चैलेंजेस दिनों दिन बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस का सामना दूसरा चैलेंज फेंक करके नहीं किया जाता, चैलेंज का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए, और वो आंतरिक शक्ति आध्यात्मिकता के सिवाय कहीं से भी नहीं मिल सकती। इसलिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए वर्तमान समय के परिवेश में आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। हम राजनेताओं की जिंदगी देखते हैं, 40 से अधिक वर्षों से दिल्ली में रहती हूं, बहुत इस क्षेत्र में सेवा का अवसर मिला, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत आप करते हैं, अपनी भूख प्यास परिवार इन सब का भी आपको बलिदान करना पड़ता है सेवा हेतु, लेकिन तनाव, तनाव अपने लिए आप जमा कर लेते हैं, उस तनाव का, तनाव की पैदाइश ही ना हो, और हर कार्य आप एक कर्म योगी राज योगी होकर के कर सकें, उसके लिए भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसी रीति हम मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं, और मूल्यों को जीवन की नींव बना करके समाज में सेवा के लिए उतरते हैं, शनै शनै उन मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज आरंभ हो जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, विल पावर स्ट्रांग हो, मूल्यों को सस्टेन कर सकें, उसके लिए भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। बदलते परिवेश में जहां हर दिन परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ चलना इतना सहज नहीं होता, परिवर्तन को तब स्वीकार व्यक्ति कर पाता है जब अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है, निर्माणता है, क्रिएटिविटी है, एडजस्टमेंट है, निर्णय शक्ति प्रबल है। ये सब तब संभव है जब थोड़ा हम अपने अंतर जगत को, अपनी आत्मा को सशक्त करें। प्यारे भाई और बहनों, आज आप सबको इसीलिए बुलाया गया, और मुझे विश्वास है कि सम्मेलन के दौरान हर सत्र से आप अपने लिए कुछ विशेष बात चुनकर लेंगे, उसे आप नोट करिएगा और उसके ऊपर मनन और चिंतन करिएगा। वह चीज अगर जीवन में आपके उपयोगी है अपना लीजिएगा और आप एक सशक्त राजनेता उभर कर समाज की सेवा करने में सक्षम होंगे, ऐसी हम सबकी शुभ भावना है। अब मैं आपके सम्मुख ब्रह्मा कुमारी बहन शारदा, जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की पिछले 45 वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से सदस्य हैं, अपनी अल्प आयु में आप में पदार्पण किया, देश विदेश में अपनी सेवाएं अर्पित करते, वर्तमान समय अहमदाबाद में अपनी सेवाएं आप दे रही हैं और साथ ही साथ माउंट आबू और सारे भारत में भी सेवाओं में अपना पूर्ण योगदान देती हैं। हमारे समक्ष आकर आप ईश्वरी विश्वविद्यालय के विषय में बताएंगी। आपको पता हो कि आप जिस जगह पर आए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और साथ साथ अपना स्वागत वक्तव्य आप सबके सम्मुख रखेंगी ब्रह्मा कुमारी बहन शारदा जी।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में सर्वात्माओं के पिता परमात्मा शिव और उसकी आप सर्वश्रेष्ठ रचना जो विश्व का नियंता है, सारे विश्व को लॉ एंड ऑर्डर में चलाने वाला है, उनके आप साथी और सहयोगी ऐसे सारे भारत और नेपाल से पधारे हुए विशिष्ट आत्माओं का विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। और जिस परमात्मा पिता ने आप सभी को यहां आने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि करण करावनहार वही है, उस परमात्मा पिता की उपस्थिति में आज के हम इस आध्यात्मिक सशक्तिकरण उन राजनेताओं के बीच उस परमात्मा पिता का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन और स्वागत जो स्वयं का ही अभिवादन करने वाले हों, स्वागत करने वाले हों, वो अपनी स्व की स्थिति में, स्व के अपने श्रेष्ठ स्वमान में, जैसा कि आप सभी को आज प्रातः के राजयोग शिविर के प्रथम चरण के प्रथम अध्याय में स्वयं का परिचय मिला कि आप कौन है, और मैं समझती हूं आपके इस 3 दिवस के यहां की उपस्थिति के दौरान आप अपने उस श्रेष्ठ स्वमान की एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है और उस सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, सारे विश्व भर में एक यही संस्था है, विद्यालय है, जिसकी स्थापना आज से 78 इयर्स पहले स्वयं निराकार परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सिंध हैदराबाद में की, जो 1950 में यहां भारत माउंट आबू में बसा। और उस सब के पीछे का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ रहा, जैसे कि किसने कहा है, ध्येय पाने के लिए तुझे स्वयं कदम उठाना होगा, अपने पथ का कंकर तुझे स्वयं हटाना होगा। अब कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, तुझे स्वयं ही अपने अंतर का दीप जगाना होगा। आज हम सब कोई कुछ ना कुछ ध्येय लेकर, लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता बापू गांधी का स्वप्न राम राज्य की स्थापना था, वो शायद स्वप्न ही रह गया, लेकिन विश्व रचयिता और विश्व का बापू निराकार परमात्मा शिव इस स्वप्न को साकार कर रहे हैं, जो पुनः समाज में उन मूल्यों की, दैवी गुणों की, नैतिकता की और यथार्थ नीतियों की पुनर्स्थापना करके इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं। क्योंकि हम सबके अंदर एक ही आशा है, एकता हो। गीत बड़ा अच्छा हम सभी गाते भी हैं और सुनते भी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज वही भारत देश हमारे सामने है, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है परमात्मा पिता पुनः भारत को उस ही शिखर पर, जहां सोने की चिड़िया डाल डाल पर थी, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे, जहां एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक कुल, धर्म और नीति दोनों का बैलेंस था, पुनः एक ऐसे सुंदर समाज और सुंदर विश्व की स्थापना का महान कर्तव्य कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है, वैल्यूज ओपन द हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ। तो हमारे खोए हुए जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करके एक एक मानव के अंदर फिर से उन दैवी गुणों की धारणा करा करके हर नर नारायण बने, हर नारी लक्ष्मी बने, ऐसा लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम सभी को दिया है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8,500 सेवा केंद्र न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व के 137 देशों में कार्यरत है। साथ ही साथ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, WHO का मेंबर है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस में इस विद्यालय को 5 नेशनल और 1 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ऐसा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय धर्म और जाति से ऊपर उठकर, हर वर्ग से ऊपर उठकर, समाज के 18 प्रोफेशनल वर्ग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या वुमेन है, वीकर सेक्स है या बच्चे हैं, जूरिस्ट है या बिजनेस है, सिक्योरिटी है या शिपिंग ट्रांसपोर्ट है, पॉलिटिकल है या रूलर है, समाज के एक वर्ग को भी नहीं छोड़ा है, और उनके उस प्रोफेशन के साथ साथ किस प्रकार से स्पिरिचुअली उसको एम्पावर किया जाए, इस प्रकार की लर्निंग्स इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने देकर के न सिर्फ स्वयं का लेकिन आने वाले सभी भाई बहनों के जीवन के अंतर के दीप को जागृत किया है। ये विद्यालय वो कार्य कर रहा है जो ईच वन टीच वन, वन टू वन, फेस टू फेस, उनकी अंतर की महसूसताओं से जीवन में यथार्थ नीति को धारण करते हुए, एथिक्स को धारण करते हुए, किस प्रकार से हम एक आदर्श, एक श्रेष्ठ नागरिक बन करके विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि ये भारत क्या है। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व को पुनः भारत को उस शिखर पर ले जा रहा है जिसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेन सांग और फाइयान ने किया था, लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। आज उस भारत की दशा का वर्णन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाथ कंगन को आरसी नहीं है। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हर कदम पर असुरक्षा है, अनसर्टेनिटी है क्या होगा, लेकिन परमात्मा पिता ने आकर के हमें थर्ड आई ऑफ विजडम दिया है, तीसरा नेत्र खोला है, और वो तीसरा नेत्र खोलने वाली है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की भी अगर स्पेलिंग करते हैं उसमें तीन आई है, टू आईज तो हर एक के पास है, लेकिन थर्ड आई ऑफ विजडम, जिस तीसरे नेत्र से आज हमें देखने की आवश्यकता है, वास्तविकता को हम देखें, वास्तविकता को हम महसूस करें, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सबसे बड़ी टीचिंग है कि व्यक्ति जो है, जैसा है, उसको देख करके, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, उनके द्वारा समाज और विश्व की सेवा का कर्तव्य किया जाए। और यही कारण है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक लीडर नहीं है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर एक को लीडर बनाया है, और हर एक में वो लीडिंग क्वालिटीज है, ना सिर्फ स्वयं को लीड करता है लेकिन अनेक मनुष्य आत्माओं को समाज में जीवन का परिवर्तन करने के लिए प्रेरणाएं देता है। विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी युवक मिल जाए तो मैं भारत को स्वर्ग बना सकता हूं, लेकिन इस विश्वविद्यालय में 10,00,000 ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, तो क्या विश्व स्वर्ग नहीं बन सकता है? सिर्फ स्वयं के अंदर एक दृढ़ता, मूल्यों की धारणा, यथार्थ नीतियों की धारणा और एथिक्स, आध्यात्मिकता सेल्फ को एम्पावर करती है, और वो सेल्फ एम्पावरमेंट उसको उसके जीवन की मंजिल की ओर पहुंचाने में बहुत बहुत मददगार बनता है। जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टीचिंग्स को जीवन में धारण कराने के लिए, जहां बाल, युवा, नारी, वृद्ध, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य से देवता बनाकर के उस रामराज्य की पुनर्स्थापना की संकल्प को साकार कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस धरती पर फिर से उस ही रामराज्य स्वर्गिक दुनिया दैविक दुनिया जहां हर बाला राधा और हर बालक श्री कृष्ण होगा ऐसा सुंदर सुखमय संसार बनाने का कर्तव्य ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8700 सेवा केंद्र चाहे वो गांव है या कस्बे हैं या छोटे से छोटे इंटीरियर आदिवासी प्लेसेस हैं वहां पर भी इसका कार्य उतने ही उमंग उत्साह से चल रहा है जहां हर मानव आकर के ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ समाज की हर प्रकार से सेवा कर रहा है। रोटी कपड़ा और मकान कठिन काम नहीं है लेकिन जीवन में एक मूल्यों को धारण करना मूल्यों का संचार करना और मूल्यनिष्ठ जीवन आज उसका मूल्य शायद अतिशयोक्ति है। जब तक हमको खुद वैल्यूज की वैल्यू नहीं है हम वैल्यू बेस्ड सोसाइटी और अपने जीवन को वैल्यूज से संपन्न नहीं बना सकते। ये विद्यालय हर एक के जीवन को मूल्यवान मूल्यनिष्ठ चाहे परिवार है समाज है वो बनाने का कार्य अपनी गतिशीलता से कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हम पुनः उस रामराज्य को इस धरा पर देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
अब मैं आमंत्रित करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप। मधुरवाणी ग्रुप जो बहुत सुंदर आध्यात्मिक गीत और संगीत तैयार करते हैं। आप राजयोगी बालक हैं, बचपन से ही आपने अपना जीवन ईश्वरी सेवा में लगाया है और सेवा करते करते परमात्मा ने ऐसी कला आप लोगों को प्रदान की। मैं समझती हूँ 100 से अधिक सीडी तो शायद बनी होंगी। स्वागत करेंगे ऐसे राजयोगी संगीतकारों का। आप बहुत सुंदर एक गीत प्रस्तुत करेंगे।
अध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए हैं, राजहंस मोती चुगने ज्ञान मान सरोवर आए हैं, राजनीति का कायाकल्प हो शुभ संकल्प लाए हैं, स्वागत में अरावली के रोम रोम उस्काए हैं, रोम रोम हर्षाए हैं, आपका पुनः पुनश्च अभिनंदन है, स्वागत है, स्वीकार करें।
करण लिए राजनेता आए हैं, राजनीति का कायाकल्प हो शुभ संकल्प लाए हैं, राजहंस मोती चुगने ज्ञान सरोवर आए हैं, स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए हैं, अध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए हैं। तन मन पर अनुशासन हो सबके दिल पर शासन हो, हे आत्मन भृगुति भाल पर राजन का सिंहासन हो, मन पर अनुशासन हो सबके दिल पर शासन हो, हे आत्मा मन बिगुटी भाल पर राजन का सिंहासन हो। राजयोग के राजमार्ग पर अपने कदम बढ़ाए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए, आध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए हैं। प्रसन्नता और प्रेम बढ़े, मन की मंगल कामना। स्वर्णिम हो भारत अपना, सब में हो सद्भावना। प्रसन्नता और प्रेम बढ़े, मन की मंगल कामना। राजनीति आध्यात्म मिलन में, हरा गगन मिल गाए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए, आध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए हैं। दादियों सा एक प्यारा नेतृत्व मिले, आज करे हर दिल पे राज कल ताज तिलक और तख्त मिले। राजनीति को दादियों सा एक प्यारा नेतृत्व मिले, आज करे हर दिल पे राज कल ताज तिलक और तख्त मिले। नव भारत नव युग का सपना, नव भारत नव युग का सपना नैनों में समाए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए, आध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए हैं। सरकार है और नहीं अब देर करे, बुला रहा संसार है। प्रभु की यही पुकार है, वक्त की ये दरकार है और नहीं अब देर करे, बुला रहा संसार है। बुलियों की माला सेवा दुशाला, स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए, आध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए। राजहंस मोती चुगने, राजहंस मोती चुगने ज्ञान सरोवर आए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए, आध्यात्म सशक्तिकरण लिए राजनेता आए हैं। रोम रोम हर्षाए हैं राजनेता आए हैं, रोम रोम हर्षाए हैं राजनेता आए हैं।
बहुत सुंदर, कितना अच्छा, दिल से, शब्दों से, भावनाओं से आपने हम सबका स्वागत किया। आपके लिए हम करतल ध्वनि से अच्छी तरह से ताली बजाते हैं। और अब हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भाई, जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लिया। जब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, माता पिता के माध्यम से आध्यात्मिकता के बीज आपके अंदर परमात्मा ने आरोपित किए और उन बीजों को अपनी कुशाग्र विशाल बुद्धि से पहचान कर आपने उनका खूब अच्छी तरह से उपयोग किया। आपने विद्यार्थी जीवन में ही इस चीज को यूज करना शुरू किया। लॉ ग्रेजुएट, बीकॉम ऑनर्स और एक ही गो में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की 1953 में। आप सोच सकते हैं कितने अनुभवी हैं। आपने इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है और उस अनुभव से आप समाज की सेवा में उपस्थित हैं, विशेष रूप से जो एपेक्स बॉडी है उसके आप सदस्य हैं, पॉलिटिशियन विंग जो कि राजनेताओं की सेवा करने को समर्पित है उसके आप चेयरपर्सन हैं, प्यूरिटी न्यूज मैगजीन उसके आप चीफ एडिटर हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपने कई सेवाएं जो अद्वितीय हैं उन्हें संपन्न किया है। लाखों भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली में जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है उसके आप एडवाइजर हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं और विभिन्न योग्यताओं के आप धनी हैं। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी के आप एडवाइजर हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि भाई साहब आप ये बताएंगे कि इस कन्वेंशन का आखिर एम क्या है। आपने हम सबको एकत्र किया, उसके पीछे उद्देश्य और लक्ष्य क्या है हम सुनेंगे आदरणीय ब्रजमोहन भाई से। Aim and object of the convention.
Om Shanti. आज के इस inaugural सत्र के शांतनु से टाइम लगेंगे। आज के इस inaugural सत्र के मंच पर आसीन राजनेताएं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, सामने बैठे हुए देश के अलग अलग प्रांतों से, नेपाल से लेकर, असम से लेकर, केरला से लेकर, पंजाब से, हर जगह से आए हुए राजनेताएं, अगर हम आपकी रिप्रेजेंटेशन गिने तो आप करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम इस माउंट आबू के बहुत ही शांत और पवित्र स्थल पर, जहां 1953 से तपस्या हो रही है, इसका नाम ही देखो कितना अच्छा है, माउंट आबू। आबू को अब्बा का घर कहते हैं और ब्रह्मा को बाबा आदम भी कहते हैं। तो उस प्रैक्टिकल स्थान पर हम पधारे हैं, तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये सम्मेलन किस उद्देश्य से हुआ है और हमें किसने बुलाया है, किस लिए बुलाया है। यदि हम आज की देश की हालत देखें तो कह सकते हैं कि जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, क्योंकि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कुछ ऐसी विचित्र दशा है कि धनवान धनवान होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन किसी ने कहा है, ए पर्सन सॉ फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, टू पर्सन सॉ फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, दो व्यक्ति थे, उन्होंने सलाखों के पीछे से देखा। वन सॉ मड एंड द अदर सॉ मून एंड स्टार्स, एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने चांद और सितारों को देखा। लेकिन वन सॉ लोटस इन द मड एंड द अदर सॉ इन द मून स्कार्स, किसी ने कीचड़ में कमल को देखा और किसी ने चांद में भी दाग को देखा। गीत होता था ना, तुझे मैं चांद समझा था मगर उसमें भी दाग है, तो देखने वाले चांद में भी दाग को देखते हैं। लेकिन दो प्रकार का देखा जा सकता है। एक व्यक्ति देखता है कि अंधेरा बढ़ रहा है, अंधकार फैल रहा है, और दूसरा देखता है कि अब सवेरा होने वाला है, क्योंकि घोर अंधकार के बाद ही सवेरा होता है और रोशनी की जरूरत अंधेरे में ही पड़ती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में चार लाइनें हम परमात्मा के लिए कहते हैं, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। ओ गॉड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो ये जो अंधकार है, कौन से अंधकार की बात हो रही है, ये इसकी नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे वाले अंधकार की बात हो रही है। तो अगर हम आज की दशा को देखें तो घोर अंधकार है, क्योंकि द्रौपदियां कह रही हैं भारत की कि अब तो हमें बचाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो सोचने की बात है आज की स्थिति में कि दुनिया की जो हालत हो चुकी है उसको कौन ठीक कर सकता है, क्या कोई इंसान या इंसानों का समूह कर सकता है। کیا خیال ہے آپ کا؟ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر کر سکتا ہوتا تو یہ حالت روز بس سے بدتر نہیں ہوتی جاتی. کچھ سمے پورو تک پچھلی صدی میں بھی منشیوں نے یونائٹیڈ نیشنز بنایا, کامن ویلتھ بنایا, کئی پرکار کی سنستائیں اور سموہ بنائے کہ دنیا میں شانتی ہو جائے. ہوئی, بلکہ آج تو ان تک بھی کوئی نہیں پہنچتا. دیکھ رہے ہیں کہ ودونس ہو رہا ہے, روز چتر دکھائے جاتے ہیں بہت بھیانک طرح کے, پورے کی پوری سیولائزیشنز لوگ سوئے سوئے سوتے تو کیا ہوں گے, مارے جا رہے ہیں, کوئی نہیں, جیسے کانشیس انسان کی مر گئی ہو. تو ایسی استھتی میں کون بچانے والا ہے, کس کی آوشیکتا ہے؟ تو جیسے اندھکار میں سوریہ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی پرکار سے جب وشو میں اندھکار ہو جاتا ہے تو لوگ پرماتما کو یاد کرتے ہیں کہ اب تو ہی رکھوالا ہے. اور سچ مچ پرماتما ہی اس دنیا کو بدلتے ہیں. بھگوت گیتا اس بات کی ساکشی ہے کہ جب دھرم کی اتی گلانی ہو جاتی ہے, پاپ کا گڑا بھر جاتا ہے, بلکہ اوور فلو کرنے لگتا ہے, تب پرماتما آتے ہیں. تو ایسے سماج میں آج کی دنیا میں درشٹی دکھائیں, ڈرائیں, تو ایسی کون سی سنستا ہے سچ مچ جو پرماتما کے کارے کو, جب پرماتما دنیا میں اوترت ہوتے ہیں وہ تو نراکار ہیں لیکن ان کو کچھ مادھیم چاہیے ہوتا ہے, تو کون سی ایسی سنستا ہے جو سچ مچ پرماتما کے اشارے کو سمجھ کر, ان کی شری مت کو مان کر, اپنے جیون کو پریورتن کر کے ایک ایسا سیمپل پیدا کرتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کوئی رول ماڈل ہے, کوئی سیمپل ہے جس کو دیکھ کر لوگ پریرت ہوں, تو اس کا زندہ جاگتا ثبوت یہ پرجا پتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ ہے. بہنوں نے آپ کو اس کی کچھ وشیشتائیں بتائیں, لیکن آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں گھر کے چار ویکتی بھی پریم پیار سے مل کر نہیں رہتے, اس زمانے میں یہاں ہی آپ دیکھ لیجئے, سارے دنیا میں برہما کماری کے سینٹر جا کے دیکھ لیجئے, الگ الگ پرکار کے, الگ الگ بھاشاؤں کے, الگ الگ ستر کے, الگ الگ کلچرز کے, الگ الگ نیشنز کے, الگ الگ رنگوں کے لوگ کیسے پریم پیار سے اکٹھے ہو کے رہ رہے ہیں. تو کون سی طاقت ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ کل بھی آپ کو بہنوں نے بہت کچھ بتایا تھا کہ یہ سنستا ہی عجیب طرح کی ایشوری سنستا ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں وکاروں کی تپت, کام وکار کی تپت اتنی ہو جائے کہ جیسے کوئی فرنیس جل رہا ہو, آپ لوگ جو رپورٹس پڑھتے ہیں ریپ وغیرہ کی, کل ایک نیتا جی کہہ رہے تھے کہ 3 سال کی بچی کا ریپ ہو رہا ہے, 70 سال کے گرینڈ مدر کا ریپ ہو رہا ہے, یہ تو رپورٹڈ ریپس ہیں. اگر آپ دیکھیں دھوکے سے کی گئی ریپس, لالچ دے کر کی گئی ریپس, مجبوری سے کی گئی, تو سارے دیش میں ریپ ہی ریپ ہو رہا ہے. اب بتائیے ایسے تندور جیسے گرم استھتی میں, فرنیس جیسی میں کوئی برف جما دے تو کیا کہا جائے گا؟ شنکر جی کو کیا دکھایا جاتا ہے کہ شنکر جی برف ہمالے کی چوٹی پہ بیٹھ کے تپسیا کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کو کوئی گرم گرم چائے یا کافی ایسے کپ میں دے جو باہر سے ٹھنڈا ہو اندر سے گرم چیز ہو, تو برہما کماری سچ مچ اس تپتی ہوئی دنیا میں ایک اور پرکار کی ٹھنڈی آگ, جس کو گیان یوگ کی اگنی کہتے ہیں, اس کے دوارا اس اگنی کو شانت کر رہی ہے. तो आप देखिए कि ऐसी संस्था में आप पधारे हैं। वैसे तो आप लोग इलेक्टेड हैं, आपको बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इलेक्ट किया है, लेकिन भगवान ने इलेक्टेड में से आपको सिलेक्ट किया। यहां इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, और ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है। जैसे साइंस भी बताती है कि नेचर में ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है, तो आपके सारे जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें परमात्मा ने आपको सिलेक्ट कर लिया और अपने घर बुला लिया, तो आप कितने खुशकिस्मत हो गए। तो अच्छी तरह अपनी इस खुशकिस्मती को देखकर कि और कोई भी हो सकता था आपकी जगह पर, आप क्यों हैं। कई आते आते रह गए, कई रहते रहते आ गए, कि कुदरत का खेल है जिसका भाग्य होता है। तो अपने इस ईश्वरीय सौभाग्य के लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, अब आपने ताली तो बजा दी, लेकिन आप स्वर्ग में जाने को तैयार हैं? हैं? सच्चे सच्चे स्वर्गवासी होने को तैयार हैं? नकली तो हम कहते रहे किसी ने शरीर छोड़ा, उसकी इज्जत करने के लिए स्वर्गवास हो गया जी। अब पता नहीं हुआ कि नहीं, क्योंकि उसके कर्म के अनुसार होगा, लेकिन परमात्मा तो जब निमंत्रण देता है तो स्वर्ग में भेजता है फिर, तो इसलिए सोचने की बात है। कई लोग ब्रह्मा कुमारियों को कहते हैं, जब हम किसी को निमंत्रण भेजते हैं उस पर लिखा होता है ईश्वरी निमंत्रण, वो कहते हैं लो जी भगवान का बुलावा आ गया, तो सोच में पड़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सच्ची बात है, कहते हैं कि एक बारी नारद जी को ख्याल आया कि स्वर्ग में तो थोड़े से लोग रहते हैं, बड़े बड़े सोने के महल हैं, देवता विचरते हैं, पॉल्यूशन फ्री है, और नरक में देखो कि शमशान में जलाने के लिए भी लाइन लगती है, तो ये कैसा विचित्र बात है। तो उन्होंने परमात्मा के पास चले गए कि आप मालिक हैं, थोड़ी सी आबादी इधर से उधर ट्रांसफर कर दीजिए, स्वर्ग में इतने खुले खुले महल, और यहां पर स्कूल के बच्चे को दाखिल कराना हो तो 3 साल की वेटिंग लिस्ट है, तो ट्रांसफर कर दीजिए। परमात्मा मुस्कुराए, बोले कि नारद जी जो है ठीक है। कहते मेरी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, तुम्हें छुट्टी देते हैं, जितने चाहे ले आओ, नरक से ले आओ, हम स्वर्ग में भेज देंगे। अब जनाब वो आ गए धरती पर, एक के पास गए, उन्होंने सोचा सबसे अच्छा साधु होगा जो हर वक्त कहता रहता है भगवान का नाम लेता, उसके पास गए कि चल भाई तेरे लिए बुलावा आया, स्वर्ग में सीट खाली है। बोला जी अभी ताजा ताजा आश्रम बनाया, अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, कहीं किसी और के पास जाओ। फिर वो एक बिजनेसमैन के पास गए, कहते नकली कमाई बहुत हो गई, चल असली कमाई कर, तेरे लिए पासपोर्ट भी आया, वीसा भी आया, चल मैं ले चलता हूं स्वर्ग में। वो कहता अपना काम कर जा। अब वो डरने लगे कि भगवान ने तो कहा था जो ठीक है, मैं तो कुछ गलत समझ बैठा। तो एक बूढ़ी माता के पास गए, जो कि राम राम की जगह लाम लाम कर रही थी, दांत उसके निकले हुए थे, कुबड़ी थी, हर वक्त कहती थी हे भगवान उठा ले। उसने कहा एक तो ले जाऊं। उसके पास गए तो उसने कहा माता तू चल, तू जो रोज याद करती है भगवान ने तुझे बुलाया है स्वर्ग में। कहती अभी तो मैंने अपने पोते की शादी करनी है। उसने कहा फिर क्यों कहती भगवान उठा ले। कहता वो तो मैं नकली कहती थी। कहते नहीं माता चल। कहती मेरे पीछे क्यों पड़ा, जा किसी और के पास जा। आखिर बेचारा निराश होकर आ गया। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि सच्ची सच्ची बताइए, क्योंकि व्यक्ति आदी हो जाता है। कोई व्यक्ति हथकड़ियां बेड़ियां पहन के 5 साल जेल में रह ले, उसको छुट्टी दे दो तो हथकड़ियां ना पड़ो तो नींद नहीं आती उसे। तो हम आदि भी हो चुके हैं, तो इसलिए हम नकली कहते रहे स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग बनाना है, और अंदर से तैयारी ना हो, इसलिए हमने आपसे पूछा कि अभी सचमुच मौका है, क्योंकि इलेक्टेड वालों को सिलेक्ट करके परमात्मा ने अपने घर में बुलाया। आबू के आदम ने, लोग कहते हैं इनका ब्रह्मा बाबा अपने आप को भगवान कहता है, ऐसा नहीं, वो तो देवता भी नहीं कहता था, आदम, उसने बुलाया है कि भाई मैं चल रहा हूं, आप भी नहीं चलना है तो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसलिए आप भिन्न भिन्न पार्टियों से आए हैं, राजनीतिक पार्टियों से, सब पार्टियों का लक्ष्य तो बहुत अच्छा ही रहता है, हर एक का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा होता है, एक जैसा ही होता है, आप सब डिटेल जानते हैं कि अगर वो काम मेरी पार्टी ने कर दिया तो ठीक, जब दूसरा करने लगे तो अपोज करते हैं हम, क्योंकि मैंने नहीं किया तो ये मैं बड़ी खतरनाक चीज है। तो हमने सोचा ये सारी पार्टियां वार्टियां छोड़ो, सबकी नीयत तो एक ही है, तो इसलिए कोई ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसका मैनिफेस्टो में हो स्वर्णिम भारत का निर्माण करना। ये तो सारे ही कहते हैं स्वर्णिम भारत का निर्माण करना, कई स्वर्णिम कर्नाटका, स्वर्णिम आंध्रा, बहुत कुछ स्वर्णिम ही स्वर्णिम है, तो इसलिए स्वर्णिम पार्टी का निर्माण करना, उस पार्टी का क्या नाम रखा जाए, आप समझे तो देवता पार्टी ठीक है जी, कि सब मानस से देवता की है कर्तना लागी बार, देवता तो सारे बनना चाहेंगे, कौन कहेगा मैं दानव बनता हूं। गीता में दो प्रकार के लिखे हुए हैं, दैवी संपदा असुरी संपदा, और कौन चाहेगा मैं असुरी संपदा में, उसके सारे लक्षण लिखे हुए हैं जो आजकल मौजूद हैं। इसलिए अगर आप समझते हैं कि स्वर्णिम भारत बनाना है तो उसके लिए दो नारे हैं, हर पार्टी का नारा होता है, किसी का नारा था गरीबी हटाओ, उसने गरीब हटाने शुरू कर दिए, लेकिन सचमुच अगर आप चाहते तो दो बहुत अच्छे नारे हैं और वो गीता में ही लिखे हुए हैं और हम सब उन नारों को आज भी यूज करते हैं। एक नारा है सत्यमेव जयते, करते हैं, पार्लियामेंट में भी लिखा हो सत्यमेव जयते, ट्रुथ शैल प्रिवेल, सच की विजय होगी। दूसरा नारा है अहिंसा परमो धर्मा, गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा के आधार पे टेम्परेरी आजादी तो ले ली ना, बिना लड़ाई किए, तो ये दो नारे दोनों ही गीता में लिखे हुए हैं, सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्म। अगर आप इन नारों पर चलें और इन नारों को माने और इनके प्रैक्टिकल अर्थ को समझ लें तो राजनेता जैसा होना चाहिए वो हो जाएगा। गीता के शुरू में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, आप कहेंगे नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है, बार बार ठोक ठोक के लिखा हुआ है भारतवासियों के लिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लिखा हुआ, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, क्यों कि तुम शरीर नहीं हो, ये तो जाएगा, तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नश्वर है, फॉर एवर है। अब सत्य की क्या परिभाषा होती है, जो चीज थी भी है भी और रहेगी, फॉर एवर रहेगी, वो सत्य है। तो भगवान ने क्या कहा, सत्यमेव जयते, अगर तुमने जिंदगी की युद्ध में जीतना है, देश को जिताना है, मैया को पार करना है, तो एक पहला फार्मूला गीता में लिखा हुआ है, अपने को आत्मा मानो। अब आप देखिए, जो हम भ्रष्टाचार करते हैं, लालच करते हैं, लोभ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर किसी को ये पता हो कि मैंने एटर्नल वैल्यूज को अपनाना है सदा की, क्योंकि खुशी इंसान सदा की चाहता है, टेम्पररी तो नहीं चाहता, शांति सदा की चाहता है, आपको कोई सदा की चीज चाहिए हो तो आप उसको रखेंगे कहां। मान लो आज परमात्मा खुश हो जाए और आपको कहे चलो ग्रांटेड एवर हैप्पी हो जाओ, आप उस एवर हैप्पीनेस को कहां रखोगे, शरीर में रखोगे, शरीर गया तो फिर आपकी गई, तो रखने की जगह भी तो परमानेंट चाहिए। नारियल को कागज के लिफाफे में ले जाओगे तो क्या होगा, कहते कनाडा में बच्चे लैबोरेटरी में साइंस स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे। एक किसान चला गया विजिट करने, तो उसने पूछा बच्चों क्या कर रहे हो, तो बोले जी हम एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं जिसमें हर चीज पिघल जाए। तो किसान था, उसने कहा अच्छा बच्चों बहुत अच्छी बात है, पर इसको रखोगे कहां? आप ही सोचिए कि आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बना लो जिसमें हर चीज पिघल जाए तो रखोगे कहां? इसी तरह से हम चाहते हैं जी हमें परमानेंट शांति हो जाए, वैल्यूज भी परमानेंट रहे, टेम्परेरी वैल्यू में तो लोभ लालच आ जाएगा, बैग बोरो स्टील। उसके लिए परमात्मा ने हर एक धर्म में ये लिखा हुआ है। सिख धर्म में अकाली कहा गया जिसको काल न खाए। तो ये जो आत्मा स्वरूप को मानना है, ये आपको हर प्रकार की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठा देगा, क्योंकि आपको पता है साथ जाना है। साथ ये चीजें नहीं जानी, वो मेरे संस्कार जाने हैं, तो जैसे भरूंगा। तो आत्मा बनने से यहां भी सुख वहां भी। अब आम आदमी पार्टी के जब चलाई गई थी तो उसके नेता ने रामलीला ग्राउंड में गीत गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अब भाईचारा किस आधार से होगा? चाहते तो सभी हैं, हमने हिंदी चीनी भाई का लड़ाई हो गई। आज देखेंगे मुसलमान शिया सुन्नी में लड़ाई हो रही है। तो भाई का मतलब होता है जिसका बाप हो। भाई अंडरस्टूड है, ब्रदरहुड इम्प्लाइज फादरहुड। तो अगर फादरहुड ऑफ गॉड होगा तो ब्रदरहुड ऑफ मैन होगा। अगर हमने गॉड को ही गुम कर दिया, किसी के पिताजी शरीर छोटे हैं तो बच्चे लड़ने शुरू कर देते हैं। तो हम या तो पिता को गुम किया हुआ है, या सब कोई पिता पिता कह दिया है, हर एक में भगवान देखो, तो फिर तो फादरहुड हो गया, तो कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, अहिंसा परमो धर्म। हमने आपको कल भी बताया था कि गीता में पांच तरह की हिंसा बताई हुई है, कंप्लीट हिंसा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम से बुरी नजर, क्रोध से लड़ाई झगड़ा वर्ड वार, लोभ से व्यक्ति का भी शोषण और प्रकृति का भी शोषण, मोह से इनजस्टिस, भाई भतीजावाद, इसको दे दो इसको ना दो, जिसको अधिकार है उसका छीन लो, अभिमान पाप मूल अभिमान, डोमिनेंस, हर व्यक्ति क्या चाहता है मेरा धन बढ़ जाए, मेरा क्योंकि मैं ज्यादा डोमिनेट कर सकूं। तो ये सारी गड़बड़े हैं। तो भगवान ने कह दिया अगर संपूर्ण अहिंसा रखनी है, देवता बनना है, ये छोड़ दो और बॉडी कॉन्शियस रहोगे तो ये सदा रहेंगी। फिर लास्ट में भगवान ने क्या कहा, ये विधि है और सिद्धि क्या मिलेगी एंड में जाके, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि तुम अर्जुन ने कहा मेरा मोह छूट गया है, अब मुझे पक्की याद आ गई है मैं कौन हूं। तो अगर कोई राजनीतिक सचमुच ये समझ ले कि भाई ये फालतू चीजों से उठना है, तो वो क्या बनेगा, निष्काम सेवाधारी, निष्काम कर्मी। भगवान देखो कुछ नहीं लेता, निष्काम सेवा करते, सब उसको याद करते हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीजों से, बॉडी और बॉडी के संबंधों से मोह नष्ट कर देंगे, आत्मा मानेंगे, तो आप सचमुच ऐसे नेता बनेंगे, आपका दिल खुश, क्योंकि अपनी इंद्रियों के भी नेता, लोभ लालच से परे, फियर और फेवर से ऊपर, और सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। तो आपको सबको पता है जितना सुख सेवा में है उतना किसी चीज में नहीं है। देने में सुख है, लोग समझते हैं लेने में तो बोझ है। अगर आपको किसी को 100 रुपया देना हो तो आपका हाथ कैसे होगा, ऐसे, और 1000 लेना हो ऐसे हो गया ना। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको जिंदगी में अपनाइए। और यहां पर जो कुछ बताया जा रहा है वो आपको अलग तरह के राजनेता बना देगा। लोग हैरान होंगे कि ये कौन व्यक्ति है, इस जैसे भाई साहब कह रहे थे लोग हमसे उल्टा काम करवाते हैं, कल कह रहे थे ना, लोग कहते हैं ये करो, लोगों को डर लगेगा आपसे उल्टा काम कहने की बात करने के लिए भी, क्योंकि बिल्ली भी सूंघती है दूध कहां पड़ा है। तो लोगों को पता है ये सॉफ्ट जगह है, यहां ट्राई कर लो, नहीं तो आपके नजदीक ही नहीं आएंगे। और दुनिया सुधर जाएगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब जी, आपने मूल तत्व की बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। अब मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि इनॉग्रल सेरेमनी दीप प्रज्वलन के माध्यम से संपन्न कराने के लिए प्रबंध करेंगी, और साथ ही मैं विवेक भाई जो कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि अपनी कविता हम सबके मध्य रखेंगे। भ्राता विवेक भाई,
ओम शांति। सम्माननीय मंच पर उपस्थित भ्राता ब्रजमोहन जी, भारत की राजनीति के विशेष रतन, हमारी दिव्य बहनें और इस सभागार में उपस्थित मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ के अलौकिक वातावरण और यहाँ के पावन संघ की तारीफ में एक शेर कहते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। हर गीत मूक था गाए जाने से पहले, हर गीत मूक था गाए जाने से पहले, हर बुत पत्थर था मूरत बनाए जाने से पहले, और हर दीप अंधेरे में था जलाए जाने से पहले। इन सबको किसी ने छुआ, इन सबको किसी ने छुआ और चमत्कार हो गया, इन सबको किसी ने छुआ और चमत्कार हो गया, जैसे धरती ने छुआ बीज को गुले गुलजार हो गया, साथ मिला जिसको भी सच्चा वो भव सागर से पार हो गया, वो भव सागर से पार हो गया। अध्यात्म का अब सूरज निकले हो खुशियों का उजियारा, अध्यात्म का अब सूरज निकले हो खुशियों का उजियारा, फिर सोने की चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। कलियां सदा महकती रहें अपने इस चमन की, कि कलियां सदा महकती रहें अपने इस चमन की, खुशबू यहां उड़ती रहे शांति और अमन की, हर दिल हर दर हो भाईचारा, फिर से सोने की चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। आओ के सच्चे दिल से एक नए जग का सपना देखें, कि आओ सच्चे दिल से एक नए जग का सपना देखे, सुखों से शांति से भरा हुआ घर अपना देखे, चमकता हुआ हर बच्चे की किस्मत का तारा, फिर सोने की चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। और आप में वो ताकत है, ईश्वर के बच्चे हैं, कि आप सब में वो ताकत है जो आप नाव को पार लगाओगे, कि जो सबको पार लगाओगे, सोचना आपको है कि आप कौन दिशा ले जाओगे, कौन दिशा ले जाओगे, रास्ता आप बनाओगे, कि रास्ता आप बनाओगे या बहा ले जाएगी धारा, फिर से सोने की चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। भाई बहनों, ये वो दर है जहां आके तकदीरें बदल जाती हैं, जहां आप पधारे हैं, भ्राता जी ने बड़ी महिमा की, ये वो दर है जहां आके तकदीरें बदल जाती हैं, आध्यात्म की राह पर टूटी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं, और यहाँ सफेद रंग में वो ताकत है, बिगड़ी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाती हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं। ये ज्ञान का सरोवर ओम शांति का महानाद महामंत्र सुनाता है, ओम शांति का महानाद महामंत्र सुनाता है। यहाँ का रूहानी मार्ग, यहाँ का रूहानी वातावरण आनंद का मार्ग बताता है, आनंद का मार्ग बताता है कि आध्यात्म के साथ से ही मिलता है जीवन का सुख सारा, फिर से सोने की चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। स्वर्णिम समाज की राह बनाने में आप चलो हम साथ चलेंगे, कि स्वर्णिम समाज बनाने में आप चलो हम साथ चलेंगे, आप इस संस्थान का सहयोग लें, हमारी दिव्य बहनों का, भाइयों का सहयोग लें, हम मिलकर दीपक बन साथ जलेंगे। इतने दीपक साथ जले तो कहां रह पाएगा अंधियारा, फिर से सोने की चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। भाई बहनों, कहते हैं कि रास्ता कभी किसी को पहुंचाता नहीं है, कि रास्ता कभी किसी को पहुंचाता नहीं है, पहुंचने वालों को चलना होता है, पहुंचने वालों को चलना होता है। इसलिए अध्यात्म की राह पर दो कदम आप चलो, हम चलें, चलती रहे ये जिंदगी, और साथ अगर चल दें तो फिर पास बड़ा है किनारा, सोने की फिर चिड़िया हो अपना भारत प्यारा, अपना भारत प्यारा। अध्यात्म का सूरज निकले हो खुशियों का उजियारा, खुशियों का उजियारा। धन्यवाद।
बहुत सुंदर कविता, उत्साहवर्धक है। और अब हम लोग दीप प्रज्वलन कर कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन करेंगे मिलजुल कर। सम्माननीय मंच से मैं निवेदन करूंगी, कृपया आप सब सम्मुख आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। और आप सब क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, बस साथ साथ आप सब भी शुभ भावनाएं देंगे। अगर खड़े हो सके आसानी से तो वो भी अच्छा होगा, खड़े होकर के शुभ भावनाएं प्रदान करें, ताली भी बजाएं। कल जिन भाई बहनों ने शाम को प्रवचन किया था उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं, और दीप प्रज्वलन में आप भी सही।
दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
ताली बजाएंगे, अच्छी तरह बजाइए।
ये देना, ये जग बदलने वाला राज योग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
अब आपके सम्मुख मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता इंद्र बहादुर बानिया। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल से हम सबके मध्य आए हैं, हमारा मित्र देश है, और संस्कृति भी मिलती जुलती है, समस्याएं भी बहुधा एक जैसी हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप कृपया अपनी शुभ भावनाएं ग्रीटिंग्स के रूप से इस सम्मेलन को प्रदान करेंगे। भ्राता इंद्र बहादुर बानिया।
इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान में नेपाल का संसद सदस्य और नया बनने वाले नेपाल संविधान सभा का सदस्य के हैसियत से नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान सदस्य दोनों सभा के सदस्य होने के नाते इस 3 दिवसीय राजनेताओं को आध्यात्मिक सशक्तिकरण बनाने का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए मैं ओम शांति परिवार नेपाल से विजय भाई जी ने हमको जो अवसर प्रदान किया, इसलिए उनको हृदय से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आबू में आप सबको हार्दिक नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं हृदय से नेपाल के तरफ से और नेपाली जनता के तरफ से। दीदी जी और बहन जी और भाई ब्रिजमोहन इस कार्यक्रम का चेयरमैन लगात सबो में ओम शांति कि ये प्रोग्राम मेरे को हिंदी ज्यादा समझती हूं मगर ज्यादा बात कर नहीं सकूंगा, इसके लिए क्षमा याचना करता हूं। और मैंने सोचा था और समझता था कि सबो नीति का प्रधान नीति प्रधान सेवक राजनीति होता है। राजनीति अगर धर्म के पथ पे चले और धर्म की नीति में आधारित राजनीति निर्माण करे तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। इसलिए ये आध्यात्मिक चिंतन से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है और राजनीति को आध्यात्मिक से सशक्तिकरण बना के आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम ओम शांति सेवा केंद्र मुख्यालय आबू से आयोजित किया है, इस संसार को बढ़ते हुए पाप लोभ मोह वितृष्णा एक आपस में मन में जो भ्रांति है वो भ्रांति को अंदर से शांति पैदा करने वाला जो आबू है, ये पिता का थल जो स्थान है, मेरे को इस स्थान पे आके हृदय से शांति मिल रहा है और मेरे को नेपाल को भी अब लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान बनेगा वो मेरा विश्वास है। कि हम दो लोग नेपाल के संसद सदस्य और नेपाल के नया संविधान गणतांत्रिक संविधान बनाने वाला सदस्य आए हैं। मैं नेपाली कांग्रेस से नेपाल में प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरा दोस्त एमाले से अनंत पौड़ेल आया है, वो भी संसद में प्रतिनिधित्व करता है और सरकार में भी साझेदार है। इस सभा में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूं, इसमें भी हमारा संसद में जैसा ये आध्यात्मिक सभा में टाइम शेड्यूल है, मेरे का टाइम 6 मिनट का मिल रहा है, इसलिए मेरा सब 6 मिनट में मैं खत्म करने के भी इजाजत लेता हूं। अगर थोड़ा कहीं बढ़ जाएगा तो इसमें क्षमा याचना करता हूं। ये राजनीति जो बात है, सभी नीति का प्रधान नीति राजनीति है। जब राजनीति गलत दिशा पे खराब तरह से किसी भी मुल्क का आगे बढ़े तो उसका राष्ट्र का और जनता का तकलीफ होता है। इसलिए ये ओम शांति परिवार जो राजनीति को आध्यात्मिक चिंतन से सशक्तिकरण करने के लिए और ये संसार को जो आध्यात्मिक चिंतन मन पर नहीं है उसको मन पर आध्यात्मिक चिंतन जगाकर परमात्मा को मिलाने का प्रयत्न हो रहा है। इससे समाज को शांति मिले और सभी देश को समृद्ध मिले। ये नेपाल में ओम शांति का 1011 सेवा केंद्र है और उस सेवा केंद्र में हम किसी भी जगह में किसी टाइम में वो नेपाल के समृद्धि के लिए शांति के लिए सेवा केंद्र में हम जाते रहेंगे और विजय भाई हमको बार बार उधर प्रोग्राम में और समाज के हित में और समाज के शांति के लिए और आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रोग्राम नेपाल में भी होता है। इसलिए ये महाभारत जो 125 करोड़ आबादी जनसंख्या है, यह आबादी जनसंख्या को यहां का प्रधानमंत्री ने नेपाल में जाके बोला था कि मैंने नहीं बोला कि नेपाल बुद्ध का देश है, बुद्ध नेपाल में जन्मा है, जन्म लिया है और नेपाल सगरमाथा का देश है और नेपाल सीता का जन्मभूमि है और जनक राजा का भूमि है। इसलिए नेपाल और भारत का धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक और वैवाहिक सबो संबंध नेपाल और भारत के बीच में है। युगों युग से जब मानवीय सभ्यता शुरू हुआ था, भगवान राम ने सीता को नेपाल और भारत के बीच जो वैवाहिक संबंध कायम किया था, इसलिए हम वो पवित्र भूमि से इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। इसलिए कि कोई भी चिंतन, व्यवसाय करो, राजनीति करो और स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर बनो और शिक्षक बनो, लेक्चर बनो, प्रोफेसर बनो और एक अच्छा एग्रीकल्चर किसान बनो, जिसी बनने के लिए भी आध्यात्मिक चिंतन का जरूरी है और सभी चिंतन के आगे बढ़ाने के लिए राजनीति व्यक्तियों को, राजनेता को आध्यात्मिक चिंतन का जरूरी होना है। ये मेरे को यहाँ आके माउंट आबू में आके मेरे को ज्ञान थोड़ा मिल गया और प्राप्ति हो गया और इसको मैं नेपाल में राजनीति को धर्म नीति में आधारित रह के सत्य और ठीक के पथ में चलने के लिए नेपाल का संविधान हरेक जात जाति भाषा भाषी और वर्ग समुदाय और सब स्टेट का बनने वाला सबके हित में ऐसा कानून मुलुक का वो मुख्य कानून बनाना है। वो कानून युग युग के लिए रहे और वो धर्म नीति में आधारित मन से आध्यात्मिक चिंतन से परमात्मा को हृदय से नमन करके बनाने में हम लगेंगे, जुटेंगे और ओम शांति परिवार को यहाँ मेरे को लेराकर और यहाँ मेरे को आने का अवसर, बार बार आने का मन था मगर नेपाल का एमपी बनके संविधान सभा और प्रतिनिधि सभा का सदस्य होकर कि बाबा का और पिता का यही इच्छा था कि आप बने और उधर जाइए, कुछ ज्ञान लेके नेपाल को समृद्ध बनाए, भारत और नेपाल का संबंध एक अर्का में देखने वाला आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर इस दोनों देश को समृद्ध बनाने के लिए आगे बढ़े। इसलिए मेरा वही अवसर वही भाग मिला था, इसलिए मैं हृदय से इस माउंट आबू और ये ओम शांति परिवार, जो विश्व भर शांति के रूप में किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा, किसी भेषा और क्रिस्ट बुद्धिस्ट अल्लाह सबके जगह पर ये ओम शांति परिवार रहेगा। इसका धर्म परमात्मा से जुड़ा है, इसलिए परमात्मा से जुड़ने वाला धर्म सबसे उत्कृष्ट है। सबके पास मन है, सबके पास श्रेष्ठ है, सब सर्वश्रेष्ठ शिव किसी सबके पास जाने के लिए सब भगवान ने हमने सुना है, जन्म लिया है, मगर हमने अभी तक ये धरती में शिव जी का कब जन्म हुआ, कब आया, कब तक रहेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। ये निराकार शिव का जो ओम शांति परिवार है, इस परिवार का हृदय से नमन करके यहाँ से कल तक लेकर आज तक जितना भी भाइयों और दीदी जियों और बहनी जियों ने जितना ज्ञान इधर दिया, वो ज्ञान को मैंने मेरा मन मस्तिष्क में लेकर नेपाल का राजनीति सही दिशा पे लेने में उपयोग करेंगे करूंगा। यही बात बोलते बोलते अपना शब्द यही खत्म करके जाऊंगा। ओम शांति, जय नेपाल।
अब मैं आमंत्रित करूंगी भ्राता अमर प्रसाद सतपति, आप ओडिशा से हम सबके मध्य आए हैं और ओडिशा में आप 2000 में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी रहे हैं और 5 बार इलेक्शन MLA के रूप से आपने जीता है। आज हम सबके मध्य हैं, मीसा के अंतर्गत आपने अपनी तपस्या कारागार में भी की और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में जब थे आप, तब आप अपनी यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी भी थे यूनियन के। आज हम सबके मध्य एज चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन प्लानिंग ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदरणीय भ्राता सतपति जी।
At the outset, let me express my deepest gratitude who have invited to me to this occasion, and particularly the subject which has been chosen in this university. I think it is quite immense help, indispensable for all politicians. Therefore, at the outset, I am grateful that you have invited me. All the respected personalities in the dais, starting from the Bhai Briz Mohan, who is the chairman of this political wing, Bahan Asad, and all other respected members on the dais, and particularly when I was listening to our Nepali delegate, member of the parliament, the way he was speaking, and all other MLA from Delhi, Somnathji, Somnath Bharati and member of the parliament from Manipur and other friends, ladies and gentlemen. It's really an opportunity to be here, not to speak anything, but to learn many things. Not to express myself, but only I have to realize many things. It is a place of realization, expressing in words, translating in a different form, it's different. But definitely I had the opportunity in the year as good as 1997, when I was also a member of the assembly, to participate in this session, I think 17 years back. And this Isshwariya Vishwavidyalaya, this impart not only knowledge, this impart brotherhood, which is the need of the hour. All the sisters and brothers, they live together with peace and tranquility and preaches what is being utmost necessity of the hour. I was listening, rapidly listening, when Bohen Asa was speaking about Raj Dharma, Karma Yoga. These words are become irrelevant to we politicians. I let me very frank on this subject, because as we are discussing, as we are having a discussion very open manner, now we are scared of telling all these things. We say we are leaders. We say lead the people rightly. When by Brijesh Mohan with the chairman, he was telling that you have been selected by the elect, you are all elected members, and you have been selected by this to attend this conference. But unfortunately, the situation has become such. We do not lead. We are always led. We are led. Led because of the environment which persists. I do not know whether I can contribute for the change or not. It's a different thing. But fact remains that we are led because of the environment, the circumstances, the prevailing situation. What is after all being done, political activities? Rightly it has been told that we devote much more time. We forget our personal, whatever comfort is required. I do not say of all the politicians, but there are politicians who devote all his life, all his time for the purpose and serving the people. But when you go to the election, it doesn't work. It doesn't work. The considerations are entirely different. First, when the party selects some person to be elected representative, there are other considerations. When you go to the people, when you ask for their support, when beg their votes, they also, the voters, the electors, they also have a different mindset. And you have to make a compromise in between. And you have spared of the spiritual empowerment. It is an era of empowerment. There should be an empowerment. But after independence, when Mahatma Gandhi, the father of the nation, he was fighting for the cause of independence, there the issue which was raised, the fundamental issue, like this Ramarajya, these wars were forgotten. If any political party, if any politician utters, then he is being dubbed or such and such. I do not like to describe all these things. Therefore, devoid of any principle, devoid of morality, devoid of honesty, devoid of integrity, we devoid of any principle, we do somehow manage the nation. That is the reason for which, where we have been landed here. I will not tell that this is the issue, but there are challenges, there are also opportunities. This opportunity right been provided by this forum. How can we transfer ourselves? How can you transfer, become a messenger for the transferring a system, the prevailing situation? As we say there, I was going through the literature, the position paper which had been submitted here. Rightly, criminalization, corruption, communalism, all these are the words which are being entangled with politics. Once upon a time it was told that political criminalization debates went on, but ultimately what is the situation now? Things are deteriorating. Things are not improving. Regarding corruption, less spoken is more, because it has become the order of the day. caste, community, creed, these are the issues in which political leaders, political parties, they choose their candidates first. Selection of candidate is the issue in which a political party decides its mindset, gives a message. If the majority of the people belong to a caste, naturally he gets a preference. If somebody is now, once upon a time, during Mahatma Gandhi's days, it was tall, simple living and high thinking. Now living should be high, forget no thinking. If we live in such a status symbol that has been also been recognized by the electors. If you go to a remote village, if you go by foot, nobody looks towards you, they will see what sort of vehicle he has brought it. And this has become the reckless competition for which the entire political scenario, the entire political situation is in a mess. Rightly it has been described here. I will not take much of the time. I will only... My view is very clear on this subject. It is a question of individual. If the individual person, a man can be in his own way, if he has the right thinking, if he has the going in the right direction, if the purpose is honest, come whatever may, change will be brought. At times, there are failures, but failure is not the only answer. There are also examples of success and very success stories. Therefore, this type of spiritual conference, convention, which is being undertaken by the great organization, by Om Shanti Parivar, and particularly Prajapita Brahma Kumari Iswariya Vishwavidyalaya, is an opportunity. I find that the number is less. More participation should be there. At least we can learn certain things. We can be in the midst of a harbor change which can be brought, if not today, then days ahead. Brothers and sisters, as the conference will be continuing for 3 days, I had a different program. As the chairman of the standing committee, my other MLAs are also here. Just I thought it, when Bhai Natpal Maskar, Natpal Bhai ne requested me, then I find it's an opportunity to put the committee, all the members should be here, so that at least we will be in an environment and we will be learning certain things. Therefore, with this mind of learning, I had come here. I may not be possible for remaining for another days. But definitely, the way it was spoken, the principles which has been embodied here, 10 principles I was going through, it will be a guide, it will throw some light, at least for in the functioning of our political activities. It is necessary, utmost necessary, political parties and political leaders should be with some principle. Honesty, integrity is the real issue in which a politician should be embodied with, which we are devoured now, but let us think for the better days. And with these words, again, I am grateful that I have been invited here to learn certain things. And all the way, the Nepalese-Indo relation has got a news reporters because our Prime Minister has visited, and this will be also another forum to bring the world together. And only the globalization will not be possible through economic terms. Through economic issues, it must be also based on spiritual issues. This must be based on issues that the human problem faces. Prosperity will be there. The song which was sung, that Suna Chadi, it will be there. Chidiya Rane Se Nahi Hoga. Isme Shanti Chahiye, Wohi Shanti Ka Ghar Hai. Is Shanti Mein Hum Log Paya Rahe. Ichi Shabda Ka Saath, Phir Aapko Aabhar Vyakt Karta Hoon. Aap Log Bulaye Idhar.
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सतपति जी, आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि केवल एक साधन से नहीं परंतु स्पिरिचुअल फोरम से हम सब एक परिवार एकमुष्ट हो हो सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी अपनी स्नेही बहन ब्रह्मा कुमारी सुमन, आपसे निवेदन करती हूं कि चंद क्षणों के लिए हम सबको अंतर जगत की यात्रा कराएं। बहन सुमन सीनियर राजयोगा टीचर हैं, इंजीनियर हैं और ज्ञान सरोवर में ही अपनी सेवाएं आप प्रदान कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी बहन सुमन।
ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी मेरे आत्मीय भाई और बहनें, आज इस सम्मेलन में सभी पॉलिटिकल लीडर्स उपस्थित हैं जो हजारों लाखों लोगों को लीड कर रहे हैं। जब लीडर के स्थान पे हम खड़े हैं, इतने सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, अपने कंधों पर एक बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है। कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक्स हुए, एक भी मिस्टेक हुआ तो इतने सारे लोगों पर वो असर पड़ता है। तो इसीलिए एक अपने अंदर वो कैपेबिलिटी, शक्ति या स्किल्स कहे, जरूर होना चाहिए। जब आंतरिक सशक्तिकरण नहीं हुआ होगा, अपने अंदर शक्तियों की कमी होगी तो दूसरों को लीड करना बहुत मुश्किल लगता है। और सशक्तिकरण में भी हम ये कहें कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण जब हो जाता है तो सर्वांगीण सशक्तिकरण हो ही जाता है। स्पिरिचुअलिटी इज द रूट फॉर एवरीथिंग। सभी प्रकार के सशक्तिकरण का जड़ है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? सिंपल है, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। अपने आद्य को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने वास्तविकता को समझना, ये स्पिरिचुअलिटी है या आध्यात्मिकता है। उसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। दिन भर में जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो वर्ड हम यूज करते हैं वो कौन सा है? हाँ, मैं, जो शब्द है बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और दूसरा शब्द मेरा। इन दो शब्दों को थोड़ा बहुत हम उस समझ को परिवर्तन कर ले तो वही आध्यात्मिकता हम कह सकते हैं। जब भी हम मैं कहते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के जब हम मैं कहते हैं तो फिर वहां बहुत सारे नेगेटिविटीज आ जाती है। आज सवेरे के सत्र में आप सभी ने सुना, मैं माना कौन, शरीर है या आत्मा है? जब भी हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, इस भान से हम प्रयोग करें कि मैं आत्मा हूं और मेरा कौन है? इतना बड़ा परिवार मेरा है या कौन है? सबसे, ये तो परिवार मेरा है ही, लेकिन सबसे पहला मेरा है वो परमात्मा। भाई साहब जैसे भाषण में कह रहे थे कि फादरहुड की बात है, वो परमात्मा मेरा कौन है? परमात्मा मेरा है लेकिन कौन है वो मेरा? वो है मेरा पिता। उस परमात्मा के साथ हम जब संबंध जोड़ते हैं, उस स्रोत के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आत्मा एम्पावर्ड हो जाती है। तो इन दो शब्दों को परिवर्तन करने की जरूरत है, मैं और मेरा। तो इन्हीं शब्दों को लेकर के चलिए हम आंतरिक जगत की यात्रा में चलते हैं। बहुत सुंदर एक अनुभूति हम आज करते हैं। इस अनुभूति करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपने बैकबोन स्ट्रेट रखे, सीधा बैठे, दोनों पैर जमीन पे हो, अलर्ट रहे, क्योंकि समय भी थोड़ा ऐसा है तो अलर्ट बैठेंगे, और अपने आंखों को खुला रखेंगे। इट्स अ ओपन आई मेडिटेशन। आंखों को खुला रखेंगे और आंखों को पूरा भी खुला ना रखें, जैसे महात्मा बुद्ध के चित्र देखते हैं, महावीर जी का चित्र देखते हैं, उनके आंख हाफ क्लोज रहता है, ऐसे हाफ ओपन और हाफ क्लोज। बहुत नेचुरली आप देखते हैं, कोई भी एक पॉइंट पर अपने आंखों को फिक्स करेंगे। शरीर की स्थिरता, आंखों की स्थिरता मन की स्थिरता को मदद करता है। मन को स्थिर करने के लिए शारीरिक स्थिरता और दृष्टि की स्थिरता बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप विजुलाइज करते जाएंगे। मेडिटेशन माना मन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को यूज करते हैं। मन से हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और बुद्धि से विजुलाइजेशन करते हैं। जो हम पॉजिटिव थिंकिंग करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, उसी को हम विजुलाइज करना ना भूलें। एक बार गहरा सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ। सभी से निवेदन है अपना फोन्स स्विच ऑफ मोड में रखें या साइलेंस में रखेंगे, ताकि अगले 5 मिनट के लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आसपास के आवाजों से, वातावरण से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करें। मन के स्क्रीन पर उसको फोकस करें, भ्रुकुटी के बीच में। वहां अपने आप को देखने की कोशिश करें, एक चमकता हुआ अजब सितारा। भ्रुकुटी के बीच में बहुत सुंदर रीति से वो सितारा चमक रहा है। वो चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूं। अपने आप को स्पष्ट रूप से देखेंगे और महसूस करेंगे कि सचमुच वो चमकता हुआ अजब सितारा, मैं आत्मा हूं। ब्रेन के बीचों बीच विराजमान होकर पूरे शरीर का नियंत्रण कर रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूं। स्वराज्य अधिकारी हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। चैतन्य शक्ति हूं। मेरा वस्त्र है जिसको पहनकर इस सृष्टि रंग मंच पर मैं अपना पार्ट बजाती हूं। भृगुटी सिंहासन पर बैठकर मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, सब कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, भिन्न हूं, न्यारी हूं। अलग होते हुए भी इस शरीर का मालिक हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है, शांति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा निजी नेचर है। प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलते हुए पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। फैलते फैलते धीरे धीरे पूरे शरीर में शांति के प्रकंपन फैल रहा है और मैं महसूस कर रही हूं अखंड शांति। मेरे अंग अंग शीतल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, एक प्रकार के सुकून हम महसूस। अपने में वो शांति की शक्ति को भरते हुए धीरे धीरे मैं आत्मा उस परम धाम में पहुंचती हूँ जो मेरा निजी घर है, जो मेरा घर है, मेरे पिता का घर है। वहां मेरे जैसे ही अनेक अनेक चमकते हुए सितारों के बीच में एक बहुत प्रकाशित एक सितारा, उसको देखती हूँ जो बेअंत है, बेहद है। वो मेरे पिता है, परमात्मा जो मुझ आत्मा का पिता है। उनके सानिध्य में जाते ही शांति के सागर के लहरों को मैं अनुभव करती हूँ और भी गहरी शांति का अनुभव करती हूँ। मेरा मन प्रफुल्लित होकर उठ रहा है, एक हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे पिता के छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा एकदम निश्चिंत हूँ, संतुष्ट हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरे पिता इस सृष्टि के रचयिता, रक्षक, सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा उनके अति प्रिय संतान होने के नाते मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पिता के पास जो भी शक्तियां हैं मुझ आत्मा को वर्षे के रूप में सब कुछ मिला हुआ है। जो भी मेरे पिता के पास है सब कुछ मैं अपने में भरती जा रही हूँ, सशक्त हो रही हूँ, लाइट होती जा रही हूँ। सभी प्रकार की चिंता, भय, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ मिटता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है और मैं आत्मा संपूर्ण रूप से सशक्त होती जा रही हूँ। अपने अंदर सर्व शक्तियों को अब्सॉर्ब करते हुए अपने आप को भरपूर करते हुए पुनः इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर आकर पूरे संसार में इन सर्व शक्तियों के किरणों को फैला रही हूँ, इन प्रकंपनों को फैला रही हूँ। जैसे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उस पिता के संतान हूँ, ऐसे ही इस संसार के सभी आत्माएं उस पिता के संतान है, सशक्त है, सर्व गुणों से संपन्न है। इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मैं निरंतर कर्म करते समय भी चारों तरफ फैलाती हूँ। निरंतर मैं आत्मा उस पिता के साथ कनेक्टेड हूँ और पूरे संसार में इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फैलाती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। गहन अभ्यास के पश्चात अब हम पुनः अपनी कॉन्फ्रेंस की धारा को सम्मुख रखते हैं और डॉक्टर तोकचोम इन्या, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मणिपुर से पधारे हैं और ईश्वरी विश्वविद्यालय से भी आपका संबंध रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की स्टैंडिंग कमिटी के आप सदस्य हैं, स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन। देखते हैं, आपसे निवेदन करूंगी अपना वक्तव्य हम सबके सम्मुख रखें। डॉक्टर महिन्या,
ओम शांति। परमपिता ब्रह्म बाबा, ऑलमाइटी गॉड, वेरी रेस्पेक्टेड राजयोगी ब्रह्म कुमार ब्रीज मोहन जी, श्री इंद्र बहादुर बनिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नेपाल, मिस्टर अमर प्रसाद सातपट्टी, ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलए ओडिशा, मिस्टर सोमनाथ भारती, ऑनरेबल एमएलए दिल्ली, मिस्टर मोहन पटेल एक्स एमएलए गुजरात, मिस्टर अनिल कुमार सानी, ऑनरेबल एमपी, ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स, ब्रह्म कुमारी शारदा जी, ब्रह्म कुमारी सुमन जी, बीके ब्रह्म कुमारी आशा जी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वुड बी एक्सक्यूज व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, मे बी आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ यू are comfortable in English. I am neither comfortable in English nor in Hindi, but I will try to interact with you on this very important conference on the spiritual empowerment of political leaders. Brothers, sisters, just now we have seen how spiritual empowerment is done as shown by Brahma Kumari Sumanji, and I shall pick up the thread of my lecture after her, because the real spiritual empowerment, how we do for the political leaders, I came here just to learn more, and I wish I have learned, and that by that spiritual empowerment which was just shown before us. Well, we talk of this conference, I have seen the three position papers of the Brahma Kumaris. I will take a second. The first position paper is on politics based on principles and values. Number two, religions, spirituality and politics in a secular democracy. And number three, politics and politicians, their roles and responsibilities. This is very, very ideal topics, and to me, to define an ideal position is very difficult. And again, this university here wishes to have Swarnim Bharat, which is again, we talk of the main theme of this is unity is the hallmark which was there in this country from time immemorial. But now we live in unity in diversity. The country is a union of states having different governments of different political ideologies and principles. So the main contention is of this conference, perhaps, if I am not mistaken, is serving the leaders who serve the people. It is again very ideal. And I feel, I wish I am served better here. So before I go to the main topic of mine, I would like to state very humbly before all of you, I am a student of mathematics. And I was also practicing law for quite some time, following teachers. Here I would very respectfully state the professional ethics which was being taught in the profession of law. If I hurt anybody, I beg to be excused. I had a chamber under a senior, and there was a case where my senior fought against another senior at chamber. One evening, the leader of the other chamber came. He was a very respected lawyer, and asked the senior, which of the clients is richer? The answer was, my boss says, maybe my client is poorer than your client. Then this time, the other advocate says that then you have to win the case in the first instance. Then we ask, why? How is it so? Because if the poor man wins the case, the rich man will definitely appeal against the judgment. So the case continues. Even if, by the merit of the case, if it turns out that the rich man again wins the case, even then, the poor man will be convinced that once you have won the case, you have still chance to win the case. So the case continues. The profession is that the case has to continue. This is the profession of the lawyers. So I have to give up the profession from that moment after hearing that ethics. It's very terrible. This is the situation where we are living now. So when I say about the reality of the spiritualism, the ideal situation is there. So I, being a student of mathematics, I come across many interesting problems. By interesting problems in our mathematics subject is the problem which defies solution. There are many problems in mathematics which we are still trying to solve it. So in order to do that, what actually followed is the step-by-step correct procedure. Once the procedures are false, if the procedures are not correct, we don't get the result of the problem. So I started thinking, so now I picked up my study in this field of astronomy. Why? Because when there was no light in this world, when there is complete darkness, no sun, no moon in the night, what normally human beings do? They have to look up the sky. They see the sky, the stars. Perhaps they start counting the stars. And I always claim that this science is the oldest science, astronomy. So, by doing this study in mathematics, in astronomy again, we require a lot of mathematics. So I am following student of still mathematics and astronomy. And then I now join electoral politics. I say electoral politics because politics, I am a child in politics. Electoral politics is something very different. I belong to mathematics where my thinking process is based on logic and step-by-step procedure. In politics, I have to get the result and I have to fit the procedure to get the result. So please see the situation fallacy. I have to get the result. That means the politics, you have to win. Unless you win, nobody recognize you. You may be very hard-working. You may be very pious. You may be doing very good service to the people. Unless you win in politics, election is very difficult. So when I mention particularly the electoral politics, For that, I have to give the result, then I have to win, then I have to fit the procedure. This is the reality now in this democratic country of ours. So these are the changes I need not tell to all of you. Everybody knows it. And how the society has changed. And these are the things. And after realizing all these things, I feel when I came for the first time in this university, maybe in 2010, the second term of my parliament, and I saw many people who are quite devoted, who are quite spiritual, who do not want to do anything bad for the others, who always wish the best for everybody and for everything. So I was always interacting with my Dharma Kumari brothers and sisters. I used to go to Gurgaon whenever I have time, but it's difficult to spend time also. I have to be in my constituency. So time. And this time I'm lucky. I was about to miss the train by few seconds. I rushed there, and then the moment I board the train with my wife and my daughter, the train moves. So I thought, I am saved and I am brought here so that to express my views. And my very respected brother, Bijmohanji, was telling me that I am very happy man, always look to be very happy, but I am fighting in my heart of heart that what is to be done. The only thing which I wish to do, I am not a religious man. When I talk of religion, I am very afraid to say what is religion. Perhaps Hinduism is not a religion. Christianity is not a religion. Islam is not a religion. Religion is something very different. In every religion, if you are a religious man, it's very difficult to live. You know, I'm afraid to say that. But anyway, these are the part of life. And what I wish is, maybe you may not agree. I'm always happy that when people don't agree with me, I want to convince. If I am convinced, I can lick your feet also. If I am convinced that it is to be done. If I am not convinced, I am very sorry, my family is here. I am not convinced, I don't do anything which I am not convinced. But I wish that I will never try in my life to do anything which I would not like to have been done on me. This is the only philosophy, only wish I have. So I don't want that. I would do something which I would not myself like that it should be done to me. With these few words, I again thank all of you, and I thank the organizers of today's conference for having asked me to come and join. With all humility, I once again thank you. Jai Hind. Om Shanti.
थैंक यू डॉक्टर मैन्या. ये बात सत्य है जो स्वयं व्यक्ति किसी बात से सहमत होता है, स्वीकार करता है दिल से, तब वो उस चीज को आगे भी बढ़ा पाता है. अब एक छोटी सी कन्या बहुत देर से प्रतीक्षा में, इसलिए मैं कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन कर रही हूँ. वो अपना नृत्य लेके हम सबके सम्मुख आ रही है. नाम है इनका कुमारी सताक्षी. इनका हम अभिनंदन करेंगे करतल ध्वनि से. कुमारी सताक्षी. धन्यवाद सताक्षी, आप वो फ्लावर्स भी लेंगे। अब मैं आपके सम्मुख भ्राता सोमनाथ भारती जी, आप दिल्ली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और अपने विद्यार्थी जीवन से बहुत प्रतिभाशाली आपकी जीवन की यात्रा रही है। लॉ मिनिस्टर आप दिल्ली की गवर्नमेंट में थे, IIT एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और भी कई विशेष कार्यभार आपने संभाले हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना वक्तव्य हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय भ्राता सोमनाथ भारती जी, आप पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी।
परम पूजनीय सादा जी, आशा जी, राजयोगी ब्रिजमोहन जी, मेरे मित्र जो नेपाल से आए हैं, बड़े ही प्यारे शब्दों में उन्होंने अपने वक्तव्य रखे आज, बड़ा दिल को छूने वाला। इंद्र बहादुर बनिया जी, मेरे मित्र जो ओडिशा से आए हैं, अमर प्रसाद संपति जी, बहन सुमन जी, डॉक्टर थोप चौम मेनिया जी, मोहन पटेल जी, अनिल कुमार सानी जी और दूर दूर कोने कोने से आए परमात्मा रूपी भाइयों और बहनों, आपके अंदर परमात्मा को मैं सत सत नमन करता हूं। ये मेरा अहो भाग्य है कि मैं, जैसा ब्रिजमोहन साहब ने कहा कि एक एक पॉलिटिकल लीडर यहां पे जो बैठे हैं वो कई लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस मैथमेटिक्स से मैं कई लाख लोगों को, कई लाखों लोगों को संबोधित कर रहा हूं। मैं इस मौके को मुझे प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं अपने मित्र विनोद जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन जो संस्था है, ये जो अभूतपूर्व प्रयोगशाला जिसे मन के ऊपर कई सारे प्रयोग हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बड़े बैठे बैठे सोच रहा था कि शरीर के अंदर जो मन है और मन के ऊपर जो प्रयोग चल रहा है इस प्रयोगशाला में, उससे क्या क्या हो सकता है। और ये अनूठा प्रयोग जो इन्होंने आज यहां, जिसका देखने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, राजनीतिक लोगों का आध्यात्मिकीकरण, ये तो बहुत ही ऐसा अनुभव अनुभूत अद्भुत ये प्रयोग है जिसे अगर ये सक्सेसफुली पूरे भारतवर्ष में सभी पॉलिटिशियंस इसको सब्सक्राइब कर सकें, तो जब मैंने राजनीति में कदम रखने का प्रयास किया तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप तो IIT के हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप कहां जा रहे हैं, किस कीचड़ में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे भी शब्द यही थे, ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं एक स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करने जा रहा हूं। तो ये बड़ा अनूठा अनुभवी इस शब्द के अंदर दिखता है। और ये कहां से आया और कैसे आया इसका भी मैं थोड़ा सा आपको वर्णन कर दूं। मेरे पिताजी एक स्पिरिचुअल वॉन्डरर हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए वो घूमते रहे और आज भी घूम ही रहे। मेरी माताजी ने पिताजी के एब्सेंस में हमारा लालन पालन किया। हम तीन भाई बहन हैं, मेरी मां मेरे साथ आई हैं। एक बार आप खड़े हो जाइए वहां पे। मैं जो कुछ भी हूं, आप जो कुछ भी मुझे अगर थोड़ा बहुत भी देखते हैं अंदर, मेरे अंदर है कोई वैल्यू, तो मेरी मां के कारण है। इन्होंने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ मतलब सब कुछ, ना इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई ना कोई घर बनाया, तीनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाया और खूब ये शिक्षिका रही। और फिर हमने जब हम थोड़े अपने कदमों पे खड़े हो गए तो इनको रिटायर करवा करके अपने पास ले आए। तो ये जैसे नेपोलियन ने कहा था अपने देश में कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड कंट्री, एंड दैट्स अ फैक्ट। आई डू सी इफ यू कैन जस्ट इंश्योर गुड मदर्स, गुड कंट्री विल बी पॉसिबल, एंड देन ओनली गुड कंट्री विल बी पॉसिबल। मेरे मित्र, दो मेरे साथी मित्र मेरी पार्टी के आए हुए हैं, विशेष रवि जी और माननीय अधीर साहब हमारे स्पीकर हैं, और मेरे एक और एमएलए मित्र आए हुए हैं दूसरी पार्टी के। तो हम चार लोग दिल्ली विधानसभा की इस वक्त आपके पास हैं, तो दिल्ली विधानसभा में तो कुछ न कुछ परिवर्तन दिखेगा ही, यहां से जो कुछ हम ले जा रहे हैं। और जो आपने बताया इस पोडियम से, मैं बैठा बैठा सुन रहा था कि शायद कुछ बोलने को बचे ही नहीं, सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ रखा जा रहा था। कहा कि 10 लाख ब्रह्मचारी हैं, 10 लाख ब्रह्मचारी का होना यहां कोई मजाक नहीं है। और इनमें से एक एक, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर आप देखें, उनको एक चाहिए था, उन्होंने कहा एक दे दो मुझे, मैं बस बदल दूंगा। और जहां 10 लाख ब्रह्मचारी हो, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी हो, वहां क्या कुछ नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल विल अगर मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सही लोगों को पकड़ा है, उन्होंने पॉलिटिशियंस को पकड़ा है, क्योंकि अगर वो सुधर गए तो सब सुधर जाएंगे, देश सुधर जाएगा। बहुत लोग छोटे वो, उसमें भी मैं बहुत विश्वास रखता हूं कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है, कि प्राइमरी एजुकेशन में अगर आपने परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उस वक्त जितनी कंडीशनिंग कर सकते हैं आप उतनी कर लीजिए। एक बच्चा जब स्कूल में होता है प्राइमरी एजुकेशन में, जितनी ही रिसोर्सेज देश के प्राइमरी एजुकेशन पर लगाने चाहिए उतनी लगा दो और देश सुधरना चालू हो जाएगा। और वो कौन करेगा? वो पॉलिटिशियंस करेगा। और आपने बिल्कुल सही लोगों को पकड़ा है कि पॉलिटिशियंस अगर आध्यात्मिकरण राजनीति का और राजनीतिज्ञों का दोनों का हो जाए, फिर तो बुद्ध और पतंजलि और गोरख और कृष्ण का देश, जिसको आज कई पोडियम्स पे सुनने को मिलता है कि खराब देश हो गया है, सुधर जाएगा। कितना गहरा और अजूबा अतीत रहा है हमारा। कृष्ण को देखें, प्रेम की पराकाष्ठा कृष्ण। बुद्ध को देखें, ध्यान की पराकाष्ठा बुद्ध। पतंजलि को देखें, योग की पराकाष्ठा पतंजलि। और गोरख को देखें, सूरत शब्द योग की पराकाष्ठा गोरख। एक से बढ़ के एक नक्षत्रों में, तो भारत के नक्षत्रों में तो इतने नक्षत्र हैं। और देश का ये हाल इस पोडियम से सुनने को मिला, देश बहुत खराब स्थिति में। तो क्यों है आज हम सब, चूंकि हम सब अपने अपने तरीकों से देश की नीति को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि कल किसी से मुझे सुनने को मिला कि नीतियों से देश नहीं सुधरता, नियति, नियत। जब तक सही नियत ना हो, तब तक कब तक हम सिर्फ पॉलिसी के माध्यम से देश को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज इस अजूबा हॉल और इस पवित्र जगह आबू पर्वत की गोद में हम बैठे हैं, अगर हम सभी यहां से वचन लेके जाएं कि ध्यान के जरिए अगर हमारी नियत सुधर सके, और ध्यान ही एक मेरे अनुभव में सिर्फ ध्यान आया है, सिर्फ एक ध्यान के जरिए ही नियत सुधर सकती है, बाकी ऊपर से आप कुछ भी कर लें। और ऐसा अनूठा प्रयोग विश्वविद्यालय का कि पूरा विश्वविद्यालय ही खोल दिया कि राजनीतिज्ञों को ध्यान का अनुभव मिले, और ध्यान के जरिए फिर उनकी नियत ठीक हो, और नियत के जरिए फिर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाए। ये तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अजूबा, बहुत ही अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं आप। मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं इसका। 8500 सेंटर्स इन 137 कंट्रीज, रिमार्केबल, ब्यूटीफुल, समथिंग विच इज अनपैरेलल्ड, प्रॉब्ली आई हैव नेवर एवर सीन ऑन सच अ स्केल। वेरी साइलेंटली ब्रह्म कुमारीज आर शेपिंग अप द वर्ल्ड, वेरी साइलेंटली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जब हम कहते हैं, जब मैं, चूंकि मेरा छोटा छोटा बड़ा छोटा सा अनुभव रहा है राजनीतिक करियर का, मेरा बहुत 8 महीने 9 महीने का है, इसके पहले मैं राजनीतिक था और अभी भी आती नहीं है राजनीति, अभी भी सीखा नहीं हूं, सीधा सीधा जो दिल में आता है कर देता हूं। कहीं दुखी को देखा खड़ा हो गया, कहीं कोई कंप्लेन लेके आया चल पड़ा, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, आप सबको मालूम है। तो राजनीति में आने के पहले मैंने एक संत से मिलने गया था, मैंने उनको पूछा कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि भाई IITian हो, फिर सक्सेसफुल लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट में, क्या जरूरत है जाने की। तो मैं गया पूछने के लिए, तो संत ने मुझे कहा कि बेटा निष्काम सेवा करें, ही इज अ सरदार, उन्होंने कहा निष्काम सेवा करेंगे, निष्काम सेवा में सब कुछ समाहित हो जाता है। और तब से आज तक, और प्रॉब्ली जब तक आखिरी श्वास रहेगी तब तक उनके शब्द गूंजते रहेंगे, निष्काम सेवा करी, फिर तो सब हो गया, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ में वो शब्द मेरे सिर में गूंजते रहें और हृदय में समाहित रहें, इसके लिए ध्यान जरूरी है, बगैर ध्यान का नहीं हो सकता। मैं सवेरे सवेरे जब उठता हूं तो पहला चीज मैं करता हूं ध्यान, 1 घंटा ध्यान में दे दूं, फिर सारा दिन अच्छा गुजरता है, फिर लोग आके गालियां दें, लोग कुछ बोलें, क्योंकि आज नए नए पॉलिटिक्स में तरह तरह का अनुभव है, सबको मैं वादे कर देता हूं कि भाई कर दूंगा। अब चूंकि सिस्टम पुराना है, चमड़ी मोटी है, अधिकारी करते नहीं है, कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं करते, इसको फेल करना है। तो आप अपने आप को, क्योंकि दुख तो आएंगे ही, भावनाएं तो उठेंगी, तरंगे आंदोलित होंगी, लेकिन ध्यान के जरिए एक चीज होती है, होती क्या है कि आप उसको देख पाते हो, आप डिस्टेंस कर लेते हो। जब तरंग उठी क्रोध की, जब तरंग उठी काम की, जब तरंग उठी लोभ की, जब तरंग उठी अहंकार की, तो आप ध्यान के जरिए उसको देख पाते हो कि ये तरंग उठी। ऐसा नहीं कि बुद्ध के मन में नहीं उठता था तरंग, बुद्ध के मन में तरंग उठता है, और जो यहां पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्राप्त कर चुके हैं वो भी बता सकते हैं आपको, तो तरंग तो उनके मन में भी उठता है, लेकिन वो देख लेते हैं दूर से। तो थोड़ी थोड़ी ध्यान करते करते मुझे भी इसका अनुभव हो गया है, और फिर दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। फिर लोग कहते हैं, जैसे कि जो मेरे मित्र विधानसभा के बैठे हैं, वो कहते थे वहां पर, ये देखो अभी हंस रहा है। अगर आप याद करें उस वक्त के माहौल, विधानसभा के ऊपर जितने अटैक्स मेरे ऊपर हुए, तो वो उनका सारा सबका ही था, ये देखो फिर हंस रहा है, इसके ऊपर इतने सारे सीरियस इल्जाम लग रहे हैं फिर भी हंस रहा है। तो क्या, कैसे ऐसा संभव हो पाया? ध्यान के जरिए संभव हो पाया।
और ये एक ऐसा टूल पकड़ लिया, और मैं अपने पार्टी में अरविंद भाई को बार बार कहता हूं, बिकॉज अरविंद भाई भी ध्यान को बड़ा जाते रहते हैं विपस्सना में, मैं कहता रहता हूं भाई ध्यान सबको करा दो, जिससे ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने की लालसा रखेगा ना कोई मंत्री बनने की लालसा रखेगा, सब ठीक रहेगा। तो ये संभव हो पाता है। अब जब मैं मंत्री था तो मैंने किन चीजों का सहारा लिया, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, जब मंत्री होते हैं आप जो कहते हैं हो जाता है, आप कहते ये कर दो वो कर दो, अब उन शब्दों में उन कहने में कुछ गड़बड़ाहट ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज ना कह दूं जिससे कुछ नुकसान हो जाए, उसके लिए मैंने 3-4 चीज का उपयोग किया, वो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो शायद आपको भी कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल जाए। एक है मैन इन द मिरर, जो आईने में जिसका अक्ष दिखता है ना, जो इंसान सामने खड़ा होता है उससे कुछ छुपता नहीं है। मैन इन द मिरर एक हमने प्रयोग की तरह उसको उपयोग किया कि जब भी आप कभी दुविधा में हो कि जो मैंने किया वो गलत किया या जो करने जा रहा हूं गलत है कि सही है, तो किसी को मत पूछिए, अपने आप को पूछ डालिए। कैसे पूछेंगे? एक प्रयोग की तरह मिरर में खड़ा होके, शीशे के सामने खड़ा हो जाए, पूछे अपने आप को कि भाई जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, और वो आवाज आएगी, आवाज आती है। मैंने हमेशा इस चीज को, लाखों लोगों ने कुछ भी कहा मैंने उसको अपने जीवन में उतारा, कि जो शीशे में दिख रहा है आदमी आपको, अगर उसकी नजर में तुम ठीक हो तो दुनिया की नजर में तुम लाख गिर जाओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तुम दुनिया की नजर में उठे हुए हो और अपनी नजर में गिर जाओ तो समस्या है। और इसका बहुत ही फायदा हुआ मुझे। दूसरा, एक तालिस्मान गांधी जी ने दिया, वो उसमें गांधी जी ने यह कहा कि जब भी कोई आप स्कीम बनाओ, जब भी कोई आप रूल बनाओ, कोई बायलॉ बनाओ, कोई लॉ बनाओ, तो आप जो आखिरी आदमी खड़ा है, जो आखिरी आदमी बिल्कुल कुछ नहीं है उसके, इतना तन पे है कपड़ा ना, घर में है खाने को, उसकी सोचो, अगर आपके स्कीम से उसको फायदा पहुंच रहा है तब तो आप करो, वरना मत करो। सो द लास्ट मैन इन द क्यू, अगर आपने उसकी चिंता कर ली, बिकॉज हम सब पॉलिटिशियंस हैं और हम सबको बार बार ऐसे ढेर सारे मौके आते हैं जब फैसले लेने होते हैं, अगर आपका फैसला इस टेस्ट पे अच्छा गुजर रहा है, उतर रहा है, तब तो आपका फैसला ठीक है, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो बाकी सारे मूव कर जाएंगे। अगर मैन इन लास्ट मैन इन द क्यू अगर कुछ को धक्का दो तो सब धक्का में आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर बीच से आपने फैसला कर लिया तो समस्या हो जाएगी। तो ये मैं उपयोग करता रहा गांधी जी का तालिस्मान, और बड़ा उपयोग का तंत्र है ये, बड़ा उपयोग का यंत्र है ये। तीसरा, जब मैं मंत्री बना तो बहुत ही, बिकॉज पहला अनुभव था, पहली बार चुनाव लड़ा, जीता, आपने जिताया, प्रकृति ने जिताया, आपके आशीर्वाद ने जिताया। उसके बाद जब मैं सोचा कि दायित्व कितना आ गया है, अब कितना बोझ है, मैं घबरा गया, कितना कुछ, क्योंकि वो पूरी जहां देखो वही समस्या, जहां देखो वही समस्या, ना सीवर, ना पानी, ना ड्रेन, ना स्ट्रीट लाइट, कुछ नहीं हुआ है। और सबको, एक एमएलए एक एमपी को भी फोन आ रहा है कि भाई मेरा सीवर ठीक करो, मेरा पानी ठीक करो, और तरह तरह के धर्मों के लोगों से डील करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला मैंने ये फैसला किया कि एज ए मिनिस्टर ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं सबका हूं। क्योंकि जहां मैंने एक पोजीशनिंग ली कि मैं एक हिंदू हूं, और हिंदू है कौन, कितने हिंदू हैं, एक मेरे सीनियर कोर्ट में कहने लगे कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा इसको, मैंने कहा बड़ा अहंकार है हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू है कौन, मैंने कहा आप अपने घर देखिए, आपके पुत्र ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आप कितने हिंदू हैं, दशरथ ने राम को घर से निकाला था, यहां तो राम ही दशरथ को निकाल रहा है। तो हिंदू कौन है? हम पहले एक अच्छे हिंदू बन जाएं, एक अच्छे मुसलमान बन जाएं। मैंने तो ये अनुभव किया है कि किसी भी धर्म के आप अनुयायी रहिए, अगर आप अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन ढाल लें, बस और कुछ नहीं देखना है। एक अच्छे हिंदू, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा सिख, एक अच्छा ईसाई आपस में लड़ने की सोच ही नहीं सकता, ये तो लड़ाने वाले लगे रहते हैं। तो मैंने फैसला किया, अगर आपने धर्म ग्रंथों को देखें तो गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, एक नूरते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अपने हिंदू में क्या कहा गया? नर नारायणी देह, इस बॉडी को कहा गया। और क्रिश्चियन में क्या कहा है? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। कुरान में क्या कहा गया? कुरान में जब उन्होंने रब को याद किया तो ये नहीं कहा रबुल मुसलमीन, कहा रबुल आलमीन, जो रब पूरे आलम का है। तो जब धर्म ग्रंथों ने, जब फाउंडर्स ने डिफरेंस नहीं रखा तो हम कौन होते हैं डिफरेंस रखने वाले? गलत तो नहीं कह रहा? अगर आप राजी हो तो हाथ खड़ा करके बताएं। तो जब धर्म ग्रंथों ने डिफरेंस नहीं रखा, जब फाउंडर्स ने डिफरेंस नहीं रखा तो हम कौन होते डिफरेंस रखने वाले? और इसका गहरा अनुभव तब होगा जब हम ध्यान में उतरेंगे, जब ब्रह्म कुमारी जैसे इंस्टीट्यूशन हमें वो पाठ पढ़ाएगी कि कैसे गहरे ध्यान में उतरा जाता है। और मैं तो इसको कैसे उपयोग में लाया कि जो भी इंसान अपने सामने आ रहा है, खड़ा हो रहा है, वो इंसान कोई इंसान नहीं है, वो अपने हिंदू में कहा जाता है एवरी इंडिविजुअल इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो जो खड़ा हो रहा है कोई याचक नहीं है, जो खड़ा हो रहा है वो परमात्मा का रूप है, हमें मौका मिला है उसकी सेवा करने को। और इस चीज को मैंने अपनाया, और अगर मेरे वक्त की फाइल्स देखें तो गजब के कमेंट्स हैं, और क्या क्या हमने नहीं किया उस वक्त, क्योंकि मीडिया का हमारे पास कम कंट्रोल होता है। मैं देख रहा था आज जो पॉलिसी पेपर भी है उसमें भी आपने कहा कि मीडिया तो नेगेटिव ज्यादा दिखाती है, तो बहुत इससे फायदा मिला। ये स्पिरिचुअलिटी एक बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है, सेल्फ टू सेल्फ, स्वयं की स्वयं से यात्रा, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा, और बड़ा घूम घूम के आता है। माउंट आबू जाना पड़ता है, कई तीर्थ स्थल लोग जाते हैं, कहां कहां जंगलों में भटकते हैं, लेकिन स्वयं तक ही पहुंचना है। अब कोई घर बैठे समझ ले इसको, कोई माउंट आबू आके समझ ले इसको, कोई आध्यात्मिक यात्रा राजनीति के जरिए करके समझ ले इसको, करना तो पहुंचना तो वही है, और बाकी जो मैनिफेस्टेशन एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट, स्वयं से स्वयं की यात्रा। और ये बॉडी तो प्रयोगशाला है, इसमें जिसने अच्छे ढंग से प्रयोग किए वो स्वयं से स्वयं की यात्रा प्राप्त कर लेगा। तो मुझे विश्वास है कि ये जो अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना है वो इस पे भी हम पॉलिटिशियंस को पाठ पढ़ाएगा। ये जब मैं, चूंकि बहुत उत्सुक था जब नया नया पॉलिटिशियन बना, नया नया एमएलए बना, तो मैंने अपने आप से ही एक प्रश्न किया कि मैं कब एक अच्छा एमएलए कहलाऊंगा। और जवाब आया, बड़ा कठिन जवाब आया, कि जब तुम अपने क्षेत्र के हर इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाओगे। कहे तो बहुत टफ टास्क है, लेकिन चैलेंज है। अब हम आईआईटी में पढ़ते थे, वी डोंट लर्न मच बट वी डोंट लर्न हाउ टू लर्न, तो चैलेंज तो है। तो इसको और आगे मैंने डिसाइफर किया, उसमें निकला कि हर इंसान की दो तरह की यात्रा है, एक अंदर की है एक बाहर की है। आपकी जो अंदर की यात्रा है, किसी भगवान में विश्वास रखते हो, ध्यान करते हो, तीर्थ यात्रा पर जाते हूं, आपके अंदर की यात्रा मैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एज एन एमएलए, एज ए पॉलिटिशियन, आप किसी के इंडिविजुअल की यात्रा आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी बाहर की यात्रा है हर इंसान की, वो भी दो तरह की यात्रा है। एक तो उसके फैमिली से रिश्ते की यात्रा है और एक सरकार से रिश्ता की यात्रा है। जो हर इंडिविजुअल से सरकार का रिश्ता है, किसके लिए? पानी के लिए, सीवर के लिए, ड्रेन के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पार्क के लिए, पार्किंग के लिए, ट्रैफिक के लिए, पुलिसिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं जाने मिले। और अगर मैं हर इंडिविजुअल की सरकार से जो रिश्ता है उसको इंप्रूव कर पाया, तो ऑटोमेटिकली हर इंसान का उसके फैमिली से भी रिश्ता इंप्रूव हो जाएगा और हर इंसान का भगवान से भी रिश्ता इंप्रूव हो जाएगा। सही मानते हैं? कैसे? आप ध्यान में बैठे हैं, आपका सीवर बह रहा है, ध्यान में क्या आ रहा है? अरे भाई सीवर बह रहा है, पत्नी कह रही सीवर बह रहा है, तू क्या ध्यान कर रहे हो? आप घंटी बजा रहे हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, मन में चिंता है। तो एज एन एमएलए, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, आई कैन ओनली इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद योर गवर्नमेंट एंड दैट इनडायरेक्टली विल इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली एंड योर रिलेशनशिप विद योर गॉड। आखिरी में, ये जितनी भी मेरे से बहुत ही, मेरे ख्याल सारे ही सीनियर होंगे मुझसे पॉलिटिक्स में, तो जितनी भी हम पॉलिटिक्स के जरिए जनसेवा कर पा रहे हैं उसकी क्षमता तो असीम है, लेकिन जब तक ब्रिटिश एस्टैब्लिश सिस्टम को हम इंप्रूव करके, चेंज करके, इंप्रूवमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, चेंज करके जब तक उसका ओरिएंटेशन पीपल ऑफ द नेशन पे ना करें, क्योंकि ब्रिटिश आए थे यहां पे शासन करने, रूल करने आए थे यहां पे, तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था के जरिए सेवा नहीं हो सकती, उस व्यवस्था के जरिए शासन हो सकता है, उस व्यवस्था के जरिए एक तरह से कंट्रोलिंग नेचर का शासन हो सकता है, सेवा नहीं हो सकती उस व्यवस्था के जरिए। तो जब तक हम सारे पॉलिटिशियंस मिलकर के ये फैसला ना करें कि इस व्यवस्था को यू टर्न दे करके ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें कि सेंटर पे आम आदमी हो, पीपल ऑफ इंडिया हो, तब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं आएगा। और वो करने के लिए हमारा अंतरतम को मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ब्रह्म कुमारीज ने बनाया है उसकी बहुत ही जरूरत है। मैं अगर सरकार में होता तो मैं बहुत कुछ करता, अभी सरकार में नहीं हूं, कुछ महीनों की बात और है, तो अगर आ जाएंगे तो करेंगे। दिस इज तो ये बहुत जरूरी है ये, और और मैं ट्रेन में अपने भाई विनोद जी को बता रहा था, मुझे अनुभव हुआ, एक पक्षी को देखा, पक्षी का दो पर होता है, तो वो चूंकि बचपन से ही अध्यात्म में पला बढ़ा, तो अध्यात्म तो बहुत जोर रहा, सत्संगों में बचपन गुजरा, किताबों पढ़ते, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते बचपन गुजरा, ध्यान में बचपन गुजरा। तो ये जो दो पर होता है पक्षी का, आप उसको समझे, एक पर है आपके अंदर की यात्रा का और एक पर है आपके बाहर की यात्रा का। अगर दोनों में से एक भी इंबैलेंस हो गया तो समस्या हो जाएगी। जितनी आपके अंदर की यात्रा होगी उसी प्रपोर्शन में आप बाहर की यात्रा भी कर पाएंगे। आपको धन आने से, पानी से ज्यादा जरूरत है प्यास की, अगर प्यास होगी तो पानी आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। धन होने से सुख नहीं आ सकता, धन को भोगने के लिए मन में शांति भी तो चाहिए, मन में शांति है नहीं, धन इकट्ठा हो गया। तो जितनी यात्रा आपकी अंदर की होगी उसी प्रपोर्शन में आपकी बाहर की यात्रा भी सुखमय हो सकती है। अगर आपने बाहर बहुत यात्रा कर ली और अंदर की यात्रा शून्य है तो इम्बैलेंस होकर आप गिर जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा, जैसा मेरा अनुभव है। बाकी आप सारे मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, पॉलिटिक्स में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। तो ये मेरा अपना अनुभव था कि ये बाहर की यात्रा और अंदर की यात्रा बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए। ये बड़ी यूनिटी की हम बात कर रहे थे, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, जिससे थोड़ा सा जो सुस्ती आ रही ना वो निकल जाएगी। मैं 2 मिनट और लूंगा। मैं परसों एक मेरे पास मेरे कंस्टिट्यूएंसी एक आदमी आए, उन्होंने कहा कि साहब मेरा घर के छज्जे में खंभा घुस गया है, बिजली का खंभा जो है मेरे छज्जे में है। तो मैं तो नया पॉलिटिशियन, मुझे लगा ये तो गलत काम है, उसको जो खंभा उसको निकालो वहां से। तो मैंने बीएससीएस को बोला भी खंभा निकालो, कह रहे साहब समझते नहीं है, ये खंभा चलता है, ये बिजली का खंभा चलता है, ये पहले बहुत दूर था, फिर चल चल के छज्जे में आ गया, कुछ ये खंभा चल चल के उसके बेडरूम पहुंच जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये खंभा चलता है, तो ये इंक्रोचमेंट जो करते हैं, खंभा बेचारा जहां था वह था, वो उन्होंने इंक्रोचमेंट करते 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 आगे तक पहुंच गए। अभी छज्जा आया है, अब आगे जाकर उनके बेडरूम पहुंच जाएगा। तो बड़े बड़े विचित्र अनुभव भी होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये जब हम यूनिटी की बात करते हैं, जो अल्टीमेट यूनिटी जो आपको ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, जो सोल के लेवल पर यूनिटी मिल सकती है। क्योंकि जैसे आप सोल से बढ़े, जैसे शरीर में आए तो एक महिला एक पुरुष, फिर आगे बढ़िए तो कोई बिहार का तो कोई बंगाल का, फिर आगे बढ़िए तो कोई भारत का कोई पाकिस्तान का। जब रिड्यूस होते जाएंगे, जब आपका ओरिजिनल सेल्फ जो सोल के लेवल पे है, अगर आपने यूनिटी वहां बना ली, तो फिर क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या औरत और क्या आदमी, क्या भारत और क्या पाकिस्तान। तो ये इंस्टीट्यूशन, मुझे आशा है कि इस तरह की हमें ज्ञान दे पाएगा। और आखिरी के 2 लाइन, ये जितनी समस्याएं जो मेरे राजनीतिक भाई सारे बैठे हैं समूह लगता होगा, क्योंकि आपको अनुभव हो गया होगा, लेकिन मैं एक दिन बैठा बैठा बहुत घबराया, क्योंकि मेरे पास समस्याएं इतनी आ जाती हैं। जब सुनना शुरू करो ना तो लोग बिल्कुल दिन को रात को 3 बजे पहुंच जाते हैं कि साहब मेरा वो पानी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि भाई इतना चिंता में जब डूब गया, मैंने देखा परमात्मा इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाता है, मैं कौन हूं चलाने वाला, मैं अपना कर्म करते जाऊं, जितनी समस्या सोल्व कर सकता हूं करता रहूंगा। और अगर हम मैंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया तो मुझे नहीं लगता कि चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सारा साल पढ़े उसको एग्जाम की चिंता नहीं होती। समझ पा रहे हैं? जो बच्चा सारा साल पढ़े उसको एग्जाम की चिंता नहीं होती, और जो 5 साल में आखिरी 6 महीने पढ़ना चाहे उसको चिंता होती है। फिर तो एज ए पॉलिटिशियन मैंने डिसाइड किया भाई सारा साल पढ़ते रहो, एग्जाम जब आएगा पास कर जाओगे, क्या समस्या है ना, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे हैं ना कोई बल शक्ति है चुनाव जीतने की। हमने कहा सारा साल पढ़ते रहो, और ये ताकत परमात्मा आपको ध्यान के जरिए देता है कि सारा साल पढ़ते रहो। नथिंग फील्स लाइक सक्सेस। हम पॉलिटिशियंस बड़े गर्व में रहते हैं सक्सेस मिलने पे, तो फेल्यूअर से नथिंग फील्स लाइक सक्सेस। इसीलिए बैलेंस में रहने के लिए ये जो यहां से पढ़ाया जा रहा है पाठ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, हम सबको इसका अनुग्रहित होना चाहिए, और जो भी यहां से पाठ मिले हम उसे अपने जीवन में उतारें, भरपूर उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूं, आपने मुझे बुलाया और अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। ओम शांति।
आप सबने रमणीक रीत से अनुभव सुना और सेवा के प्रति आपकी जो समर्पण महत्ता है वो भी आपके वक्तव्य से झलक रही थी। समय काफी आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैं भ्राता मोहन भाई को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना अनुभव हम सबके समक्ष रखें, उसके बाद हम सब बैठे रहेंगे, अनाउंसमेंट्स इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, और उसके पश्चात हमारे अनिल भाई भी हैं, उनको भी हम सुनेंगे, सेशन को रैप अप भी करेंगे, तो धैर्य बनाए रखें।
ओम शांति। टाइम मेरे को 10 मिनट का दिया गया है, 7 मिनट में पूरा कर दूंगा। अनुभव तो आधा घंटा लगता है ना, और मेरे तो मुझे परिवर्तन का अनुभव बताना है, लेकिन मैं 7 मिनट में पूरा कर दूंगा, आप धीरज रखना। भारत के अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीन शब्दों तो आपने सुना है ना, तो पहले जिसकी भक्ति होती है उसका फल मिलता है ज्ञान, और उसके बाद धीरे धीरे वैराग्य आता है। मैं भी एक अच्छा भगत था, मैं हरिद्वार में भक्ति करने के लिए 20 साल तक गया। इसका फल मेरा, मेरे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में एक बार मेरा जाना हुआ और ज्ञान मिल गया, और उसी टाइम समझाया कि जब भक्ति पूरी होती है तभी ज्ञान को आत्मा स्वीकार करता है, तब तक स्वीकार नहीं कर सकता है। भक्ति और ज्ञान में साथ में चलते रहते हैं। और जैसा मैंने ज्ञान को स्वीकार किया, भक्ति एक सेकंड में मेरी छूट गई, या तो मैंने छोड़ा, जो भी हो मैं तो क्या छोड़ सकता हूं, लेकिन श्री परमात्मा की कृपा से भक्ति छोड़ गया। मैंने ज्ञान का डिटेल में अभ्यास करता गया, एक साल तक मैं अभ्यास करते करते चलता गया। 95 में मैं ज्ञान में आया गांधीनगर से, और अभ्यास के आधार से मुझे लगा कि यह सत्य राह है, अभी कहीं छोड़ना नहीं है, क्यों भक्ति में तो हजार राह से हम गुजर चुके थे। और आज भारत में भी आप देखते हैं कि होम हवन जप तप पूजा अर्चन विधि कथा कीर्तन दान पुण्य तीर्थ यात्रा कौन नहीं करता है, कोई आत्मा ऐसा नहीं होगा जो कर्मकांड न करता हो। इतनी अच्छी कर्मकांड करने के बाद भी 10% मनुष्य आत्माओं को छोड़ के 90% मनुष्य आत्माओं की कर्मों की अवस्था में गिरावट क्यों आई है ना? भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, भाषण तो हमारे इतने चलते हैं, धर्म पिताएं करते हैं, महात्माएं करते हैं, हमारे राजनेता तो सबसे ज्यादा भाषण करते हैं। अगर भाषण करके खुद एप्लीपट करेंगे, अगर वो प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो ही सफलता मिलेगी। बाकी कितने भी सुंदर भाषण करके पब्लिक को आकर्षित कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, इससे ज्यादा हमारा परिवर्तन करके अगर सामने आएंगे ना तो लाखों लोगों को हम वो दिखा सकते हैं और उनको इफेक्ट करेगा, प्रभाव पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे परिवर्तन होना है, तो मैंने जीवन में अप्लाई करके इसके बाद 3 साल के बाद मैं एमएलए बना, और उसी टाइम परमात्मा के जो भी नियम थे संपूर्ण मेरे जीवन में मैंने धारण कर दिए थे। नहीं तो पॉलिटिक्स में आप मानते हो ना, डबल रावण की दुनिया है जहां हर चीज मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में मिलने चीजें, जो भी चीज मुफ्त में मिलती है तो हर कोई आत्मा स्वीकार करेगा ना। तो हमने तो पानी तक छोड़ दिया था, बाहर का पानी भी नहीं पीना, पानी तो नेचुरली वाटर है, फिर भी किसी के घर का या असेंबली में नहीं पीने का। और मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे क्या दिया है और मुझे क्या करना है। उसी टाइम से मैंने सेवा का एक लक्ष्य ले लिया कि मुझे हर आत्मा की सेवा करनी है। मतलब पूरा गुजरात और पूरा इंडिया का तो मैं नहीं कर सकता था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था आजादी के लिए, वो अकेले नहीं किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके साथ जुड़ गए थे तो ये आजाद भारत हो सका। तो यहां तो ये कार्य परमात्मा ने उठाया है ना, तो इसका भी बाप था ना, उसका भी बाप है ना, तो उसके साथ अगर हम सब ज्वाइंट हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है, भारत क्या पूरी दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने पहले असेंबली में कोर्स चालू कराया, उस शायद इनको रनिंग असेंबली में मैंने 4 बार सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स कराया, इसके बाद हजारों सचिवालय ऑफिसरों को कोर्स कराया और यहां लाने की कोशिश किया। मैंने लगभग करीबन गुजरात के पूरे एमएलए यहां मैं लाया हूं, आगे निकले ना निकले लेकिन संदेश भगवान का दे दिया था। इसके बाद गीता पाठशाला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 60 गांव आते थे और एक पाटन सिटी है, तो सिटी में मैंने पहला सबसे बड़ा एक सेंटर बाबा ने बनवा दिया मेरे से, और इसके बाद हर गांव में गीता पाठशाला खोल दिया कि जब ब्रह्मा कुमारी का संदेश मिलता रहा वो आज भी चलता है। मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया है लेकिन आज भी हर गांव में वो लोग मेरे को मानते हैं देवता की तरह, कि भाई आपने जो संदेश दिया है गांव में रगड़ा झगड़ा चोरी बोरी सब कम हो गया है, मतलब तो इस आधार से मैंने प्रैक्टिकल जीवन में लाके उस लोगों को देने की कोशिश किया। और आज भी मेरा जीवन वही है कि हर आत्मा को संदेश देना। आप देखते होंगे ना, मैं एकोमोडेशन में बैठा था, कोई भी आत्मा को मेरे मुख से एक शब्द ऐसा नहीं निकला होगा उसको दुख हो, और सब संतुष्ट हुए थे कि हमको सबको सेटिस्फाइड एकोमोडेशन मिला है। अगर एक कोई आदमी को अगर होगा तो भी मैंने रिक्वेस्ट किया तक शाम को मिलना, मैं उसको रिपीट करके कहीं न कहीं अच्छी जगह दिलाएंगे, क्यों वीआईपी को प्रायोरिटी होती है। तो मेरा ये परिवर्तन मैंने ज्ञान के आधार से किया है। तो आपको जब आपका खुद का परिवर्तन करना है ना, भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला, उनको मैं जानता हूं मतलब टीवी के आधार से, पर उनको भी अगर उनका खुद का परिवर्तन करना है ना, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में परमात्मा ने एक 7 दिन का कोर्स रखा है, आधे आधे घंटे का कोर्स है। अगर वो आपने करना चालू कर दिया और सेल्फ को अगर पहचान लिया ना, तो आप दूसरे करोड़ों आत्माओं को जो सेवा करना चाहते हैं ना, वो हो जाएगी। और सच्ची बताया है, अगर पॉलिटिशियन चेंजेज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो हिंदुस्तान में परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता है। क्यों? एक नेता को पूरा एरिया मानता है, एक गांव का मुखिया होता है ना, इसको भी पूरा गांव मानता है, एक एमएलए होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में 50-60 गांव आते हैं ना, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो खुद सुधर जाएगा तो बोलेंगे हमारा नेता ऐसा है तो हमें भी चेंज होना चाहिए। तो इस आधार से मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने किया था, आज भी सफल हूं, सफल था और आज भी वही चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकली मेरा अनुभव था, बाकी अनुभव तो परमात्मा ने किया, मदद किया, ब्रह्मा बाबा ने मेरे साथ चल चल के कैसे मेरे को इम्प्रूव किया था, वो लंबा है अनुभव, लंबा होता है ना, भाई साहब ने सुनाया ना 40 मिनट सुनाया, तो अच्छा है। चलो वो तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको मान भी देते हैं हम। तो ये परिवर्तन मेरा हुआ है और मैं आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ईश्वरी विश्वविद्यालय में 20 साल से मेरी सेवाएं चल रही है, और अच्छा पाठ मेरे को बाबा ने दिया है, उस सेवाओं के आधार से मैं हजारों आत्माओं के पास पहुंच के, या पॉलिटिशियन को भी पहुंचता हूं। हमारे पॉलिटिक्स प्रोग्राम भी बाहर होते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, हम हमारा अनुभव सुनाते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, और इसमें से बहुत एमएलए चलने लगे हैं, लेकिन 100% चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो हम लोग झटके से आ गए थे, तो आपको भी यही कहता हूं कि अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, तो 5 साल का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यहां देवता बनने के लिए डिग्री भगवान जो देते हैं ना, वो मैंने स्वीकार कर लिया था कि 7 दिन में मैंने स्वीकार कर लिया। तो आप भी 7 दिन का कोर्स, कोई भी आपके हिंदुस्तान में कोई सिटी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी का सेंटर न हो, वहां जाके खाली वहां पोजीशन भूल जाना। एमएलए एक तो पोजीशन दिया है कि सिर्फ सेवा के लिए, पर पोजीशन होता है, इस आधार से हम हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उल्टा भी कर सकते हैं, सुलटा भी कर सकते हैं। आप देखते हैं ना पॉलिटिक्स में कितना उल्टा भी होता है, सुलटा भी होता है। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज, धर्म सत्ता है तो बहुत काम कर रही है, साइंस की सत्ता का काम कर रही है, विज्ञान की सत्ता, जो भी सत्ता इंडिया में काम कर रही है, अगर सुधरना होता तो सब सुधर जाते ना। एक ही सत्ता बाकी है, आध्यात्मिक सत्ता जो परमात्मा के द्वारा सिखाई जाती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप अपने घर से, आपके समाज से, आपके परिवार से, आपके सोसाइटी को, देश को, सबको आप मदद कर सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, यहां से सीख के जाएंगे और करेंगे, तो ये मेरी शुभ भावना है और आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना भी यही है। टाइम भी पूरा हो गया, 7 मिनट। ओम शांति।
बहुत सुंदर मोहन भाई, आपने बहुत ही शॉर्ट में लेकिन अपने जीवन के परिवर्तन का अनुभव एसेंस के रूप में रखा, और ये मैं समझती हूँ जरूर सबके हृदय पर उतरा होगा। और अब हम डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सेकंड टर्म इन राज्यसभा, और भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के आप सदस्य हैं। आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपना वक्तव्य समय को ध्यान पर रखते हुए करेंगे। भ्राता अनिल कुमार जी,
आशा बहन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बीके शारदा जी और राजयोगी बीके ब्रज मोहन साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो ये राजनीतिक सेवा प्रभार द्वारा आयोजित है ब्रह्मा कुमारी का, जिसमें राजनेताओं को आध्यात्मिक शक्ति सशक्तिकरण की ओर ले जाने की ओर बात है, इसमें उपस्थित हमारे जो सभी सम्मानित नेताओं के जो यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें हमारे नेपाल से इंद्र बहादुर बनिया जी जो वहाँ के एमपी हैं, नेपाल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अमर प्रसाद सत्यपति जी एक्स मिनिस्टर उड़ीसा, बीके सुमन जी सीनियर राजयोगी, डॉक्टर टोकचम मोनिया जी एमपी मणिपुर, मिस्टर सोमनाथ भारती जी, मिस्टर मोहन पटेल जी, मिस्टर राजयोगी बीके बिरज मोहन जी एवं उपस्थित इस सभा में हमारे साथ आए हुए भाई लाल बाबू गोप जी, भाई और इस सभा में उपस्थित हमारे साथी किशन चौधरी जी, शत्रुघ्न सहनी जी, फूलमती भारती जी एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि गण, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी बात हो चुकी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अध्यात्म के साथ और सशक्तिकरण, राजनेताओं का सशक्तिकरण कैसे होगा, इसकी यह विषय मुख्य विषय यह है, इस पर हमें विचार करने के लिए यहां पर बुलाया गया है। और राजनेताओं का अध्यात्म के साथ सशक्तिकरण, जैसे कि आप देख लीजिए कि कई परसेंट राजनेता यहां पर आए हैं। मैं आपको मुजफ्फरपुर जिला बिहार से आता हूं, वहां के आप शांति बहन और फलक भाई कई बार मुझे फोन किए, इस प्रकार से कई जनप्रतिनिधियों को ये फोन कर बुलाए होंगे, हमारे कई परसेंट यहां पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं कि जो इस रास्ता को चुन सके कि हम देश को किस प्रकार से लोगों को सही मार्ग दिखा सके। अभी हमारे ब्रजमोहन भाई बोल रहे थे कि आज देश के जनता जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है और इस देश में अमीर है से अमीर होता जा रहा है, तो क्या कारण है कि इसके प्रति, तो कुछ जब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट का बहुत भारी महत्व है, वोट के द्वारा जनता को चुना जाता है, तो जनता को चुनने के लिए नेता क्या करते हैं। मैं बेबाक रूप से बोलने का काम करता हूं, चाहे वो संसद में हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे ऐसे इस प्रकार का समारोह हो, मैं बेबाक रूप से बोलता हूं कि नेता जनता को ठगने के काम करता है। और आज का जो सिस्टम बन गया है, जो जितना जनता को ठगेगा उतना बड़ा नेता होगा, जो जितना जनता को ठगेगा वो उतना बड़ा नेता होगा। तो क्या होता है, जनता को ठगने के लिए जब चुनाव आता है तो नेता अब जनता चुनाव जीतने के लिए वो क्या करते हैं, वोट के लिए क्या करते हैं, जनता को मनता, जनता को मनाओ, पैसा दे के मनाओ, भाषण से मनाओ, शराब दे के मनाओ, जैसे माने जनता वैसे मनाओ। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब जनता से वो नेता जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जनता के जीत जाने के बाद वो नेता काम करते हैं, अपना काम बनता, परिवार के काम बनता, अब बाहर में जाए जनता। तो ये क्या हुआ, ये लोगों का नैतिक पतन हो गया है, लोगों का नैतिक पतन हो गया है। पांच साल पर आपको ठगने का जो काम करता है उसे भी समझाने की आवश्यकता है, उसे भी राजयोग से जोड़ने की आवश्यकता है, उसे भी मैं ब्रह्मा कुमारी के आयोजकों से मैं निवेदन करूंगा कि आम जनता को भी समझाइए कि गलत व्यक्ति को वोट न दे, गलत व्यक्ति को संसद में न पहुंचावे, गलत व्यक्ति को जो है सो विधानसभा में नहीं पहुंचावे। आप उनको बुलाते रहेंगे वो आने वाले नहीं हैं। हमारे महात्मा गांधी जी की जिक्र चला है यहां पर, महात्मा गांधी जी अध्यात्म के द्वारा उन्होंने तीन बंदर को रखा, तीन बंदर को उन्होंने रखने के काम किया। पहला बंदर, बुरा मत सुनो,
डू नॉट लिस्टन टू बैड. दूसरा बंदर, बुरा मत देखो, डू नॉट लुक बैड. और तीसरा बंदर, बुरा मत बोलो, डू नॉट फील बैड. मगर क्या होता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, तीन बंदर को रख दिए, तीन तरह के आंख बंद, कान बंद, नाक मुंह बंद. मगर क्या इस देश सुधर गया? क्या देश के लोग बदल गए? क्या हमारे राजनेता बदल गए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि बदल गए? आज अगर महात्मा गांधी भी होते तो उनको एक बंदर सिर्फ रख देते तो इस देश का कल्याण हो सकता था. और वह बंदर होता, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, डू नॉट थिंक बैड. बुरा मत सोचो, क्योंकि सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, परमपिता परमेश्वर की ओर ले जा सकता है, विश्व शांति की ओर ले जा सकता है. आज नक्सलवाद, माओवाद, एक दूसरे को ठगने का काम, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के लेकर जो काम चल रहा है, इस पर आप किस प्रकार से, इस पर आप विचार कर रहे हैं, इसके लिए आपको सोचना होगा, सोचना होगा साथियों, कि आज क्या हो रहा है. मैं ब्रह्मा कुमारी के आयोजकों से कहूंगा कि हमारे अभी यहां पर दिल्ली के स्पीकर भी आए हुए थे, आम पार्टी के नेता भी आए हुए हैं, और सब स्टेट के, आप सबको खबर किए होइएगा स्पीकर के, मगर कोई लोग नहीं आया. राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर को भी कहे होइएगा, मेंबर लोगों को भी कहे होइएगा, वो लोग नहीं आए. मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन लोगों को लिखिए कि अगर आप यहां नहीं आ पाते हैं तो आप संसद में समय दीजिए, आप लोग जाके समझाइए, संसद में जाकर, विधानसभाओं में जाकर समझाइए, ताकि उन लोगों को इससे जुड़ने का काम हो, और उसको जो आने वाले दिनों में जो आपका अध्यात्म तो अध्यात्मिक द्वारा राजनेताओं का जोड़ने का जो संकल्प लिए हैं उसको पूरा किया जा सके. सामने भी आवेगा देश के सामने. आपने कहा कि 10 लाख आपको ब्रह्म कुमारियां और ब्रह्मचारी लोग आपके साथ में हैं जो काम करते हैं, तो सिर्फ बुलाकर 1% 2% आदमी को समझाने से नहीं होने वाला है. यह समूह के रूप में आपको समझाना होगा, समूह में लाना होगा, तब जाकर जो है सो लोग का मानसिकता बदलेगा, सकारात्मक जो है सो सोच आवेगा. और जब तक सकारात्मक सोच नहीं आवेगा, जब निगेटिव सोच से जो है सो देश का कल्याण नहीं होने वाला है, विश्व का कल्याण नहीं होने वाला है. आज जो है सो कानून मंत्री थे, हम भी लॉ किए हुए हैं, हम भी लॉ को जानते हैं. हमारे कानून मंत्री भारती जी यहां पर बैठे हुए, पूर्व कानून मंत्री. मैं कहना चाहता हूं कि अपराध कौन करता है, अपराध कौन करता है? या तो कानून का ज्यादा जानकार होने वाला, कानून का जो ज्यादा जानता है वो अपराध करता है, और दूसरा वो अपराध करता है जो कानून को नहीं जानता है, जिसे कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वही हथियार उठाने का काम करता है और विश्व को अशांति की ओर ले जाने का काम करता है. ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि जो निरी है, जो सिर्फ वोट देने का काम करता है, जिसको वोट को खरीदा जाता है, ऐसे लोगों को भी समझाने का काम, समझने का काम करना पड़ेगा, तब जाके विश्व में शांति आएगा और आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा होगा. मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपने आयोजक लोगों से कहना चाहता हूं, विधानसभा और संसद में भी आप इस बात को रखिए और राजनेताओं को जोड़ने का काम कीजिए, अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम कीजिए, तब जाकर इस देश में शांति आएगी, इस विश्व में शांति आएगी, लोग भाई भाई भाईचारा समझेंगे. जय हिंद, जय भारत, ओम शांति.
आप सबने देखा कितनी कसक है मन के अंदर कि देश में शांति हम सबके परिवर्तन होने से आएगी. मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, जैसे कि भाई सब कह रहे थे, कि कई विधानसभाओं में MLA MPs आदि के लिए, पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, हम लोगों ने राज्योग प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए हैं. गुजरात, हैदराबाद, गोवा, त्रिपुरा, यहां का तो मेरे को पता है, उसके अतिरिक्त भी कुछ असेंबलीज में किए गए हैं, जो सेक्रेटेरिएट में किए गए हैं, और यदि छत्तीसगढ़ में हुआ, और भी कोई एक राज्य है ख्याल नहीं आ रहा, वहां पर भी हुए हैं, और आगे भी ये ध्यान पर बात आयोजकों के हैं, ये कार्यक्रम हम करेंगे, निमंत्रण भी है जो कि स्पीकर के माध्यम से ये कार्यक्रम रखे जा सकते हैं, उसमें आप सब भी सहयोगी बने। अगर आप लोग सहयोगी बनेंगे तो ये कार्य मुश्किल नहीं होगा। बहुत देर से मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ, छोटे बच्चे गणेश वंदना के लिए तैयार है, उन्हें 12:30 का टाइम दिया गया था, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा है आप उनका विश्वास बढ़ाएंगे, तो बच्चों के द्वारा गणेश वंदना सुनेंगे और उसके पश्चात आदरणीय भाई साहब सेशन को रैप अप करेंगे।
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
वेरी मच। ये बच्चे थे सेंट जॉन स्कूल आबू रोड, वहां से बच्चे आए हुए थे। अब अंत में मैं आदरणीय भाई सबसे निवेदन करती हूँ, ब्रिज मोहन भाई चेयरपर्सन ऑफ द सेशन एंड चेयरपर्सन ऑफ द विंग, आप कृपया सारे सेशन को रैप अप भी करेंगे और आगे के लिए हमें प्रेरणा भी देंगे। आदरणीय ब्रिज मोहन भाई।
ओम शांति। आप सबके मन में क्या है, ये सेशन अब पूरा हो, है ना? इसलिए मैं जो कुछ आपने सुना, आपने समझा और आपने धारण किया, आपको याद ही होगा सब कुछ। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबकी शांति के लिए यही अच्छा है कि मैं कुछ ना बोलूं, जैसे असेंबलियों में स्पीकर नहीं बोलते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि लास्ट वाले भाई जो थे अनिल कुमार जी, उन्होंने बहुत ही जोशो खरोश से कहा कि भाई आप लोग पहले तो जनता को ये कहिए कि गलत आदमियों को वोट ना दें। अब मैं सोच रहा था कि अगर सारे गलत आदमी खड़े हो गए तो फिर क्या होगा। तो क्योंकि अच्छे आदमी कई बार पसंद करते कि वो ना ही पॉलिटिक्स में आए। फिर मैंने सोचा कि एक नई ऑप्शन निकली है, नन ऑफ द अबव, है ना, उसका बटन दबा दें, फिर पिछली वाली असेंबली स्थगित हो जाएगी, गवर्नर रूल हो जाएगा या राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। दूसरी बात मैंने ये सोची है कि इतना जोश से भाई साहब ने कहा कि सारी असेंबलियों में जाकर सारी पार्लियामेंट में सबको समझाइए, बात तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा जोश से कोई नहीं समझा सकता। इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए कि भाई साहब आप जो हैं हमारी तरफ से जाइए और इसको समझाइए। बाकी इनके भाव बहुत अच्छे थे जिस तरह इन्होंने प्रकट किए। अगर हर व्यक्ति ऐसे जोशो क्रोश में आ जाए तो भारत बदल ही जाएगा। ओम शांति।
मैं देख रही हूँ बहनें आई हैं, शारदा बहन हमारे माननीय अतिथियों को शॉल पहना के और प्रसाद दे के सम्मानित करेंगी और हम एक मिनट साइलेंस में लास्ट में बैठ के ना साइलेंस में उठ के जाएंगे, तो वो एक आपके लिए नया अनुभव होगा। कार्यक्रम का अंत साइलेंस में करें। और बताना चाहूंगी कि आज हिंदू धर्म इस विषय में निकला तो टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री में ब्रिजमोहन भाई का आर्टिकल वेदर हिंदू डिनोट्स अ रिलीजन, ये स्पीकिंग ट्री में छपा है, September 6 टाइम्स ऑफ इंडिया। आप सब ध्यान रखें, अगर पढ़ना चाहें तो उसे ले सकते हैं, इसको बाहर नोटिस बोर्ड पर भी लगा देंगे तो वो आर्टिकल आप पढ़ सकेंगे। अब हम सब एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और फिर उठेंगे।